हरे कृष्णा। आज दूसरे सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं वर्णाश्रम सेमिनार के, श्री प्रभुपाद का वर्णाश्रम मिशन। तो कल हमने चर्चा की कि हम सभी का ध्येय क्या है, कहाँ जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो यह चित्रण है वृंदावन का, जिसमें हम देखते हैं भगवान कृष्ण बलराम गाय के साथ, ग्वाल बालों के साथ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आए हैं। अनर्पिता चैतन्य महाप्रभु वो रस, उनुत्तोज्ज्वल रस, भगवान के सानिध्य में रहने का और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति का, और विशेष रूप से सबसे परम स्तर माधुर्य स्तर तक का प्रेम हमको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और उनके आंदोलन में हम लोग हैं, और हमने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे एक प्रतिनिधि हैं, सेनापति हैं। और फिर हमने देखा प्रभुपाद जी ये पूरा संसार को जो रिवोल्यूशनाइज करना है उसके कार्य में उनके चार पहलू हैं, चार वेव्स हैं। इसमें से पहली वेव हमने देखा संकीर्तन, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन हो। थोड़ा सा खोलो, फिर दूसरी धारा, हमने देखी कि प्रभुपाद ने अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया, और फिर जिसके द्वारा अर्चक विग्रहों की पूजा प्रारंभ हुई, और फिर उसके बाद जो भक्त लोग मंदिर में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, उनको आगे फर्दर ट्रेनिंग दिया, और उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे वो लोग दीक्षा लें। ये तीन वेव। और जो चौथी धारा है वर्णाश्रम के रूप में, उस धारा के विषय में देखा कि कैसे श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन प्रारंभ करने से पहले ही ये चार धाराएं उनके दिमाग में थीं, उनकी योजना के अंतर्गत थीं। और इस्कॉन की स्थापना करने के बाद कैसे प्रभुपाद जी ने एक एक करके इन चारों धाराओं को स्थापित किया, और जो चौथी धारा है वो पूरी तरीके से स्थापित करने का कार्य प्रभुपाद जी हम पर छोड़ कर गए हैं। प्रभुपाद जी की इच्छा कि हम लोग उस कार्य को पूरा करें, चौथी धारा को पूरा करें। तो आज का कक्षा हम प्रारंभ करेंगे, आज हमारा विषय है, तो आखिर क्या है ये वर्णाश्रम मिशन, प्रभुपाद के चौथी धारा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हम प्रारंभ करते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर के एक कोटेशन से, जिसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर भक्तों के लिए वर्णाश्रम के महत्व को समझा रहे हैं। तो हम यहाँ पूरी चर्चा भक्तों के लिए कर रहे हैं, पूरे संसार को भक्त बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं वो भक्तों के समुदाय में वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं। इस विषय में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहें। यस, फर्स्ट लाइन। This we have completed. Emphasis is over. Yes. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, साधन काल ये पर्यंत हृदय काम आछे से पर्यंत वर्णाश्रमादि धर्मेर अपेक्षा ठाके। At the time of practicing sadhana bhakti, so long as there is material desire within the heart, one should remain within the confines of varnashram system. तो जब हम साधना भक्ति के स्तर में होते हैं, तो स्वरूप गोस्वामी बताए हैं कि जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो उसके अलग अलग स्तर से हम गुजरते हैं। उसमें जो पहला स्तर है वो है साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, और फिर प्रेमा भक्ति। तो जब प्रथम स्तर है साधना भक्ति, जिसका प्राथमिक चरण है वैधी भक्ति, अर्थात विधि विधानों के अनुसार भगवान की सेवा करना, उसे वैधी भक्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने इंद्रियों को नियमों के अनुसार भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि हमें स्वाभाविक रुचि नहीं होती है भगवान की सेवा करने की, इसलिए नियम के अनुसार हम भगवान की सेवा करते हैं। तो भक्तिवेद ठाकुर कह रहे हैं, जब तक हम साधना भक्ति के स्तर पर हैं, अर्थात हम साधक हैं, अभी हम सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी हम साधना कर रहे हैं, तब तक हमें वर्णाश्रम के अंतर्गत रह करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए ये जो वर्णाश्रम है मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए है जो साधक हैं, जो साधना के स्तर पर हैं। तो यहाँ पर हम कौन कौन हैं साधक स्तर पर और सिद्ध स्तर पर, कौन कौन साधक स्तर पर कौन है? हम सभी साधक हैं, सिद्ध भी कोई हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया ज़्यादातर मोस्ट ऑफ अस हम अभी साधक हैं। इसीलिए ये जो डिस्कशन है ये हमारे लिए हो रहा है, भक्तिवेद ठाकुर कह रहे हैं कि साधक के लिए हो रहा है। यस, नेक्स्ट पर्पट। अभी इस तात्पर्य में भक्तिवेद ठाकुर समझा रहे हैं कि क्या है वर्णाश्रम की आवश्यकता भक्तों के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द एफोरमेंशन वर्णाश्रम धर्म एंड वैदिक भक्ति ऑट टू बी एग्जामिन्ड। द क्वेश्चन इज द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन नेगेटेड और शुड इट बी अबैंडन्ड व्हेन वन टेक्स टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, और शुड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्णाश्रम बी फॉलोड इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कल्टिवेट वैदिक भक्ति। कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जब हम भक्त बन गए तो ये सब फिर वर्णाश्रम इत्यादि की हमें आवश्यकता क्या रह गई? तो इसका उत्तर भक्तिवेद ठाकुर दे रहे हैं कि भक्तों के लिए, जब हम भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, भक्तों के लिए क्या वर्णाश्रम का महत्व है। तो भक्तिवेद ठाकुर कह रहे हैं, एज वी हैव सेड, द मेन रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वर्णाश्रम इज दैट मेंटेनिंग द बॉडी इन गुड हेल्थ, इंप्रूविंग द फैकल्टी ऑफ माइंड, प्रोमोटिंग सोशल वेल बींग एंड लर्निंग द साइंस ऑफ सेल्फ आर ऑल कंड्यूसिव टू द प्रैक्टिस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। अर्थात शुद्ध भक्ति सेवा का अनुसरण करने के लिए, अनुशीलन करने के लिए, शुद्ध भक्ति सेवा के स्तर तक पहुंचने के लिए हमारा मन, हमारी सामाजिक स्थिति और ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान, ये तीनों चीज शुद्ध भक्ति सेवा के प्लेटफॉर्म तक हमको पहुंचाने के लिए अत्यंत सहायक हैं। मन का प्रॉपर सही प्रकार से कार्य करना, शरीर का प्रॉपरली रहना, सामाजिक स्थिति प्रॉपरली रहना, उससे बहुत अनुकूल वातावरण उपस्थित होता है शुद्ध भक्ति सेवा को प्राप्त करने के लिए। रूप गोस्वामी अन्यत्र बताए हैं शरणागति के 6 सिद्धांतों में, पहला सिद्धांत क्या है शरणागति के सिद्धांतों का? अनुकूलस्य संकल्प। और दूसरा सिद्धांत क्या है? प्रतिकूलस्य विवर्जता। अनुकूल चीज को अपनाना और प्रतिकूल चीज को छोड़ना। तो वर्णाश्रम वो व्यवस्था है जिससे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक सभी स्तर पर एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे एक साधक आसानी से शुद्ध भक्ति के रास्ते पर आगे प्रगतिशील होता है। नेक्स्ट दामोदरपुर, नेक्स्ट। हु कैन डिनाई द नेसेसिटी ऑफ द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन एज लॉन्ग एज द लिविंग बींग इज बाउंड अप इन द ह्यूमन बॉडी? इफ इट इज अबैंडन्ड एंड द अबव मेंशन्ड 4 प्रिंसिपल्स आर लैकिंग, द जीवा विल गो एस्ट्रे एंड नो गुड व्हाटसोएवर विल अक्रू टू हिम। वन शुड देयरफॉर स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द रूल्स गवर्निंग वर्णाश्रम फॉर द सेक ऑफ द माइंड, सोसाइटी एंड वंस एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियस। जब तक हम इस शरीर में बद्ध हैं, जब तक हम देहात्म बुद्धि के अंतर्गत हैं, जब तक हम उसके परे नहीं गए हैं, तब तक हमें आवश्यक है कि हम इन वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति सेवा करें, जिससे हमारा मन, सामाजिक स्थिति अनुकूल रहे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के लिए। बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्णाश्रम धर्म इज नॉट द सोल बिजनेस ऑफ जीव। अंततः जीव का अंतिम उद्देश्य नहीं है वर्णाश्रम को पालन करना। वर्णाश्रम एक जरिया है, एक मींस है। नो प्रॉब्लम, व्हाट एवर बैड क्वालिटी। तो वर्णाश्रम जीव का सोल पर्पज नहीं है। जब तक हम इस देह के अंदर हैं, जब तक इस भौतिक जगत में हैं, जब तक देहात्म बुद्धि में बद्ध हैं, तब तक ये वर्णाश्रम हमको मदद करता है। इसके विषय में और चर्चा करेंगे हम आगे। देयरफॉर विद द असिस्टेंस ऑफ वर्णाश्रम धर्म वन मस्ट कल्टिवेट प्योर डिवोशनल सर्विस। द पर्पज ऑफ वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन इज टू फैसिलिटेट द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो वर्णाश्रम धर्म मदद करने के लिए है, भक्ति सेवा करने के लिए, वो एक मीन्स है, एक जरिया है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन मे अराइज दैट सिंस द प्रैक्टिस ऑफ वर्णाश्रम इज अ डायलेटरी अफेयर, वॉट विल वन्स ड्यूटी बी इफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज विद वन्स डिवोशन प्रैक्टिस। द आंसर इज दैट इफ वन डज नॉट मेंटेन एंड नरिश द हेल्दी कंडीशन ऑफ बॉडी माइंड सोसाइटी एंड द परसूट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हाउ विल इट बी पॉसिबल टू कल्टिवेट द हायर एंडेवर डिवोशनल सर्विस। यदि हमारा मन, सामाजिक स्थिति और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के प्रति हमारा एंडेवर यदि वो सही प्रकार से मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम उससे भी ऊंचा स्तर का जो स्तर है भक्ति सेवा, उसे कैसे प्राप्त करेंगे। इफ अबैंडनिंग द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन वन एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, देन द डिमांड्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड विल कॉज वन टू बिकम इंटॉक्सिकेटेड विद मटीरियल डिजायर एंड नो साइन ऑफ डिवोशन विल मैनिफेस्ट इट्सेल्फ। यदि हम वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन के नियमों के को छोड़कर इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, तो हमारा ये माइंड, बुद्धि और मन और जो शरीर, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, डिमांड्स हैं, आवश्यकताएं और अनलिमिटेड डिमांड्स, वो हमारे रास्ते में बाधक होंगी और भक्ति सेवा प्रकट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये भक्तिवेद ठाकुर के वचनों को सुनने के बाद अभी हम भागवतम से देखते हैं, जहां पर सातवें स्कंध में एक बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी के विषय में कई अध्यायों के अंदर पूरा शिक्षण दे रहे हैं। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया नारद मुनि से। महाराज युधिष्ठिर सेड, माय डियर लॉर्ड, आई विश टू हियर फ्रॉम यू अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन by which one can attain the ultimate goal of life, devotional service. Yat puman vindate param. तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, मैं धर्म के उन सिद्धांतों को आपसे पूछना चाहता हूं जिससे व्यक्ति अपनी परम गति को प्राप्त कर सके, अर्थात भक्ति सेवा को प्राप्त कर सके। I wish to hear about the general occupational duties of human society and the system of social and spiritual advancement known as varnashrama dharma. मैं आपसे सनातन भगवान श्रोतुम इच्छामि निर्णाम धर्मम सनातनम। युधिष्ठिर महाराज क्या पूछ रहे हैं कि मुझे आप सनातन धर्म के विषय में बताइए। वर्णाश्रमाचार्युत यत पुमान विंदते परम, मुझे आप वर्णाश्रम के विषय में बताइए। तो अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम सब भक्तों के सम्मुख है, सनातन धर्म तो हम सुने हैं, क्या है हम सबका सनातन धर्म? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण। अभी वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म में क्या संबंध है, वर्णाश्रम धर्म में और सनातन धर्म में क्या संबंध है, ये इस श्लोक से स्पष्ट होगा प्रपट। तो प्रभुपाल लिख रहे हैं, सनातन धर्म मीन्स डिवोशनल सर्विस। द वर्ड सनातन रेफर्स टू दैट विच इज इटर्नल, विच डज नॉट चेंज बट कंटिन्यूज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सनातन धर्म वो कार्य है जो नित्य है, जो हर स्थिति में चालू रहता है। वी हैव सेवरल टाइम्स एक्सप्लेन्ड दैट द इटर्नल ऑक्यूपेशन ड्यूटी ऑफ द लिविंग बीइंग इज इनडीड, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21:08। देयरफॉर द मेंटेलिटी ऑफ सर्विस इज कॉल्ड द इटर्नल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। सेवा करने की वृत्ति वो हमारा नित्य कार्य है, ये हमारा सनातन धर्म है, सेवा करने की वृत्ति। दिस इटर्नल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्णाश्रम इन विच देर आर फोर वर्णस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड फोर आश्रमस, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो इस प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये जो सेवा भावना है, जो सेवा वृत्ति है, जो हमारा नित्य धर्म है, भगवान की सेवा करना जो हमारा नित्य कार्य है, उसको ऑर्गेनाइज करने का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म वो व्यवस्था है जिससे एक बद्ध जीव जो भगवान की सेवा ना करके अपनी इंद्रियों की सेवा, माया की सेवा में रत है, ये सोचते हुए कि वो एंजॉय कर रहा है, उसकी इस भ्रांत धारणा को कैसे भगवान की सेवा करने की वृत्ति में उसको परिवर्तित किया जाए, उसके लिए भगवान के द्वारा आयोजित जो व्यवस्था है उसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। इसलिए वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का सनातन धर्म है। वर्णाश्रम धर्म मतलब सनातन धर्म, दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का की वो अभिव्यक्ति है जो बद्ध जीवन में हम करते हैं। इस भौतिक जगत में रहते हुए जिस शरीर जब तक हमारे पास है, उस समय में जिस शरीर और मन के साथ हम भगवान की सेवा करते हैं उस इंस्टीट्यूशन को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का वो भाग, वो फीचर जो हम अपनी बद्ध अवस्था में करते हैं वो वर्णाश्रम धर्म है। तो सनातन धर्म इज वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म इज सनातन धर्म प्रैक्टिस्ड इन द कंडीशन्ड स्टेट। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आगे वर्णन हुआ, द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अ चांस। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभा कह रहे हैं द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अ चांस टू प्रिपेयर वन सेल्फ टू गो बैक टू गॉड हेड। ये हमने कल डिस्कस किया, हमारा लक्ष्य क्या है, तैयारी करना है हमें वृंदावन के लिए, और टू गेट रीड ऑफ द मेटीरियल एग्जिस्टेंस, द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना और भगवत धाम वृंदावन धाम जाना, ये हमारा लक्ष्य है। दस इन द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म एवरी मैन एंड वीमेन, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हर पुरुष और हर स्त्री को, एवरी मैन एंड वीमेन इज ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस। वर्णाश्रम धर्म क्या है, हर स्त्री, हर पुरुष, हर व्यक्ति को ट्रेन किया जाए भगवत धाम वापस जाने के लिए। इन अदर वर्ड्स द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म इज नोन ऑल्सो एज सनातन धर्म। वर्णाश्रम धर्म इज सनातन धर्म विच प्रिपेयर्स अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो वर्णाश्रम धर्म हमारी सनातन सेवा करने की भावना को ऑर्गेनाइज करता है भगवान की सेवा करने की तरफ, हर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, सबके लिए। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सनातन धर्म और द इटर्नल ऑक्यूपेशन। द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म प्रिपेयर्स ए मैन फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड। तो वर्णाश्रम धर्म जो है हमको तैयार करने का सिस्टम है भगवत धाम जाने के लिए। किसके द्वारा बनाया गया सिस्टम, खुद भगवान के द्वारा बनाया गया सिस्टम। ये बहुत ही जगत भगवान बनाए हैं किस हेतु के लिए, इस पूरे सृष्टि की रचना के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि हम सब जीव जो चिरकाल से भगवान से विद्रोह करके इस भौतिक जगत में उनको भूलकर, उनकी सेवा को भूलकर मिथ्या भोग करने की इच्छा से यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जीवों की बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए भगवान ये भौतिक जगत की रचना करते हैं। ठीक है, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करके भी देख लो, जो अंततः आपको सुखी नहीं करेगी, और अंततः ये आयोजन है भगवान का कि कैसे इस बद्ध अवस्था में जो हम फंस गए हैं अभी, उससे कैसे हम वापस अपनी स्वाभाविक चेतना में आ सकें, स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकें, पुनः शुद्ध भक्त बन सकें। और भगवान के इस पूरी सृष्टि के आयोजन के पीछे 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य योनि हैं जिसमें संभव है वापस इस भौतिक जगत से निकलकर भगवत धाम जाना, उस मनुष्य समाज के लिए इस पूरे भौतिक सृष्टि के पीछे जो भगवान का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान का जो आयोजित सिस्टम है उसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। यानी हम समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज की बात हम कर रहे हैं। पूरी सृष्टि के पीछे जो भगवान का उद्देश्य है उसकी अभिव्यक्ति है वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फिर आगे बताया गया उसी अध्याय में, द सुप्रीम बीइंग, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदिक नॉलेज, द रूट ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड द मेमोरी ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज। ओ किंग युधिष्ठिर, दिस प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन वर्णाश्रम धर्म इज टू बी अंडरस्टूड एज एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलीजियस प्रिंसिपल एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड, इंक्लूडिंग वंस माइंड, सोल एंड इवन वंस बॉडी। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं और जो हम भौतिक जगत में हैं इस समय, हम में क्या क्या अंतर हैं? अनेक अंतर हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं जिस अंतर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर तीन चीज की बात हुई है, माइंड सोल एंड बॉडी। अभी ये जो तीन चीजें हैं ये किस संबंध में हैं? जब तक हम यहां इस भौतिक जगत में हैं तब तक आत्मा घिरी है As you wish, I don't know. जैसा आप चाहें, जैसा ठीक से। तो कृपया ध्यान दीजिए, तो इस भौतिक जगत में जब हम रहते हैं आत्मा और आध्यात्मिक जगत में जब हमें, दोनों में अंतर है कि जब हम भौतिक जगत में है आत्मा, उसके साथ है मन और उसके साथ है शरीर, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये मन और शरीर नहीं है। आत्मा का मतलब आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक इंद्रिया, उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई भौतिक मन नहीं है। लेकिन जब हम भौतिक जगत में हम हैं तो हम बद्ध हैं एक शरीर से, और जो दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि अहंकार, और स्थूल शरीर जो पंचभूत का बना है। तो इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म का वो पहलू है जिसके माध्यम से इस भौतिक जगत में जब जीव है तो कैसे उसकी आत्मा, मन और शरीर तीनों संतुष्ट हो। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में हैं तब वहां पर अलग से शरीर और मन के संतुष्टि का कोई आवश्यकता नहीं, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वहां पर है नहीं, भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक मन नहीं है। वहां पर केवल जीव नित्य रूप से भगवान के श्रवणम कीर्तनम इत्यादि नवविधा भक्ति में रत रहता है। इसको सिंपल शब्दों में कहें, अगर हम यहाँ पर खाना नहीं खाते हैं कुछ एक भी दिन तो हमें भूख लगती है, कमजोरी आती है, हा? लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई प्रकार की आवश्यकता ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम कमजोर हों या पोषित ना हों। तो ये इस तृतीय शक्ति, इस माया का प्रभाव है कि इस भौतिक जगत में जीव को अपने इस शरीर पालन के लिए कार्य करना पड़ता है। शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः, इसलिए भगवान कहें भवगीता में, इस भौतिक जगत में यदि हम कुछ काम नहीं करेंगे तो ये शरीर भी नहीं टिका सकते हैं। ये डिफरेंस है इस भौतिक जगत में जीव का और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत में इस भौतिक शरीर नहीं है, अपने को टिकाने के लिए कोई काम की जरूरत नहीं है, वहां हम केवल आत्मा हैं। और आत्मा का पोषण कैसे होता है? भगवान की सेवा करने से, भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन से उसका पोषण होता है। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें आवश्यक है इस शरीर का मेंटेनेंस भी करना है, इस मन को भी मेंटेन करना है। तो इसीलिए वर्णाश्रम सनातन धर्म का वो पहलू है जिसमें मन, शरीर और आत्मा तीनों संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी ये वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार से तीन स्तर पर कार्य करता है, आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर। तीनों की तीनों आवश्यकताएं पूरी होती हैं वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के द्वारा। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, अनलेस इन द ह्यूमन सोसाइटी द वर्णाश्रम सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड, नो स्कीम और सोशल ऑर्डर, हेल्थ ऑर्डर और एनी ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर विल बी सक्सेसफुल। जब तक समाज के अंदर ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित ना किया जाए तब तक समाज की कोई भी व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती है। तो अभी हम थोड़ा देखेंगे एक एक करके कि कैसे वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अंदर शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, मन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, सोल की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और कैसे इसके विपरीत आधुनिक समाज में जिसमें हम रह रहे हैं वो कैसे, सोल किलिंग तो है ही, हमने कल देखा प्रभुपाद क्या बता रहे थे कि ये सभ्यता क्या है, इट्स ए सोल किलिंग सिविलाइजेशन, आत्मघा, अपने को मारने वाली सिविलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि न केवल सोल किलिंग है बल्कि माइंड किलिंग भी है और बॉडी किलिंग भी है। तीनों चीज को किल करने वाली है जिस सभ्यता में, आधुनिक सभ्यता में रह रहे हैं। इसके विपरीत वर्णाश्रम सभ्यता इन तीनों को पोषण करने वाली है। तो सबसे पहले हम आते हैं शारीर बॉडी के लेवल की स्थिति। तो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनका पोषण कैसे होता है? थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, काउज एंड बुल्स। तो क्या है हमारी शरीर की आवश्यकताएं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं। क्या हम वास्तव में अपने हृदय से कह रहे हैं ये शरीर की यही आवश्यकताएं हैं? क्या वास्तव में हमारी शरीर की यही आवश्यकताएं हैं?
अच्छी रोटी, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े,
हाँ दैट्स ओके, वो भी ठीक है, अच्छी रोटी। लेकिन आज क्या यही परिभाषा है हमारी, अच्छी रोटी, अच्छा मकान? वास्तव में क्या अच्छा मकान, अच्छी रोटी? अच्छी रोटी तो रोटी खाने का टाइम भी नहीं है, और जो खा रहे हैं तो वो तो क्या अच्छा है, बहुत पुराना है, फ्रेश भी नहीं है, इसलिए जंक फूड है। तो ओके, तो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत यानी वैदिक संस्कृति के अनुसार शरीर की आवश्यकताएं हैं आधारभूत आवश्यकताएं, शरीर और आत्मा को बनाए रखने की आवश्यकताएं। और ये सभी आवश्यकताएं कहां से पूरी हो सकती हैं? हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं, वो कहां से पूरी हो सकती हैं? ये तीन चीजों से पूरी हो सकती है, बेसिकली दो, लैंड एंड काउस, बुल्स मतलब काउस से। तो जमीन से और गाय से हमारी शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसके विपरीत जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी शरीर की आवश्यकताएं वो कैसे पूरी हो रही है? तो आप कहेंगे खाना तो फिर भी जमीन से ही आ रहा है आज भी, और दूध जो अभी भी गाय से आ रहा है आधा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि जब हम प्रगति कर लेंगे तो खाना कहीं और से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये What shall we do? Shall we close? ओके, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी आधुनिक जगत में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उसमें हम देखते हैं आज बहुत बदलाव है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे बहुत चेंज है। आज हमारी आवश्यकताओं में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसा आप सब जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं। तो जरा एक नज़र देखें कि कैसे हुआ ये चेंज, ये हमारी शरीर की आवश्यकताओं का ये स्तर हम कैसे पहुंचे यहाँ तक। आज से 100 साल या 2 साल पहले केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में शरीर की आवश्यकताएं पूरे विश्व में सब लोगों के लिए आधारभूत आवश्यकताएं थी, और उन सबका निर्वाह अगर सेमिनार के बीच में कम से कम वो हो तो अच्छा है। अच्छा ओके, थोड़ा डिस्ट्रेक्शन आता है। ओके, तो आज से 100-200 साल पहले तक भी पूरे संसार में सबकी आधारभूत आवश्यकताओं से लोग संतुष्ट थे, और उनकी आवश्यकताओं के लिए वो निर्भर थे जमीन और काय पर। तो कैसे ये चेंज हुआ, कैसे बदलाव हुआ ये? तो कैसे बदलाव हुआ, समाज के अंदर हमेशा 4 वर्ण रहते हैं। तो समाज के अंदर हमेशा एक वर्ग है बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से जब तक वो ब्राह्मण के कार्य में नहीं हो तब तक ब्राह्मण नहीं कहते, लेकिन इंटेलिजेंट क्लास, ब्राह्मण वर्ग। तो आधुनिकीकरण प्रारंभ होने से पहले समाज का वो बुद्धिजीवी वर्ग माया के द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर मन में विचार उत्पन्न हुआ बुद्धिजीवी वर्ग के, कुछ इंटेलिजेंट लोगों के, कि ये आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा क्यों करके संतुष्ट हों। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है केवल ये आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और आत्म साक्षात्कार नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम इस भौतिक प्रकृति को अपने कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपने इंद्रिय भोग को बढ़ाने के लिए उसको इस प्रकार से चेंज करें, एक्सप्लॉइट करें, जिससे हम अपने कंफर्ट्स को बढ़ा सकें। ये विचार प्रारंभ है इस आधुनिकीकरण के पीछे। हर एक एक्टिविटी के पहले विचार आता है। जैसे बिल्डिंग बनी, उससे पहले इंजीनियर ने इसको मन के अंदर प्लानिंग किया। उसी प्रकार से आज जो आधुनिक सभ्यता हम देख रहे हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, बुद्धिजीवी वर्ग के मन के अंदर विचार कि जीवन, लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए, बहुत अधिक सुख सुविधाएं, मेटीरियल कंफर्ट्स होने चाहिए, इंद्रिय भोग के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध होने चाहिए। क्यों लोग अपना सादा जीवन से संतुष्ट हैं, क्यों आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट हैं, और ये क्या आत्म साक्षात्कार। ये जब जीवन का ध्येय भुला दिया गया बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा और जीवन का लक्ष्य बन गया कि जीवन का लक्ष्य है चार्वाक मुनि का सिद्धांत, कि जब तक जीना है ऐश करो, जब ये जीवन का सिद्धांत बन गया, यहां से विचार प्रारंभ हुआ आधुनिकीकरण का। अभी ये विचार जब मन में आया तो बुद्धिजीवी वर्ग, अभी सोसाइटी को कैसे चेंज किया जाए, ये लोग सब संतुष्ट हैं आधारभूत आवश्यकताओं से, कैसे इसको चेंज किया जाए, इस पूरी सोसाइटी को कैसे चेंज किया जाए, तो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम पहला चीज है जो मोहरा बनता है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। तो ये आधुनिकीकरण के लिए जो पहला स्टेप बुद्धिजीवी के मन के अंदर दिमाग में आने के बाद जो पहला चेंज, पहला स्तर जिस पे चेंज होता है, वो है एजुकेशन सिस्टम। तो आप देखेंगे अगर इतिहास में, हिस्ट्री में जाएंगे, तो करीब 200 साल पहले अमेरिका के अंदर डेलास में सबसे पहले ये आधुनिक शिक्षा शुरू हुई जो आजकल हम देख रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन। और वहां पर यदि आप उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन देखें वहां पर, तो वहां पर लिखा गया है कि नाउ वी शुड, अभी हमें शुरू करना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें, जिससे हम अलग अलग सुविधा के संसाधनों को बढ़ा सकें। क्योंकि अगर पूरे समाज को बदलना है, सादा जीवन से उनको इस आधुनिकीकरण में ले जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को कैसे उसका इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करना है, इस प्रकार से उसको यूज करना है, जिससे हम अपने आर्टिफिशियल नेसेसिटीज को बढ़ा सकें, कृत्रिम आनंद को, कृत्रिम साधनों को बढ़ा सकें, तो उसके लिए आवश्यक है टेक्नोलॉजी। इसीलिए आज तक जो एजुकेशन का सिद्धांत रहा, करेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र विकास, पूरे जगत में सब एजुकेशन सिस्टम में, केवल भारत में नहीं, सब जगह ये आधुनिकीकरण से पहले शिक्षा का हेतु हुआ करता था चरित्र विकास। लेकिन अभी आवश्यकता पड़ी कि चरित्र विकास के साथ साथ और धीरे धीरे चरित्र विकास की जगह शिक्षा होनी चाहिए किस चीज की, तकनीकीकरण की, टेक्निकल एजुकेशन। इसीलिए ये तकनीकीकरण ये स्टार्ट किया गया, क्योंकि हमें टेक्नीशियंस चाहिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए जो इस मेटेरियल नेचर को चेंज कर सकें या इसको यूज कर सकें अलग अलग संसाधन उपलब्ध करने में। तो इसलिए हम देख रहे हैं आज उसकी पूरी अभिव्यक्ति। आजकल की एजुकेशन क्या एजुकेशन है, फ्रॉम नर्सरी क्लास टू हाईएस्ट क्लास, क्या उसका हेतु है, पूरी तरह से क्रिएट टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को लाओ जिससे, और ऐसी नई नई चीजें बनाओ जिससे हम शरीर के इन सुखों में वृद्धि कर सके, मटेरियल कंफर्ट्स में वृद्धि कर सके। तो उस प्रकार से टेक्नीशियंस बने, इंजीनियर्स आए, और पूरा मशीनी युग प्रारंभ हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, और इस प्रकार से अलग अलग मशीन और उसके संसाधन बनने शुरू हुए, और धीरे धीरे रिवॉल्यूशन हुआ। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे, बहुत सारी चीजें बनने लगी जो पहले नहीं थी, लेकिन अभी लोग संतुष्ट हैं सादे जीवन में, तो उनको खरीदेगा कौन, उनको यूज कौन करेगा, क्योंकि लोग संतुष्ट हैं अपने सादे जीवन में, लोग संतुष्ट हैं, तो बना तो दिया हमने, लेकिन उसको खरीदेगा कौन, उसको कौन करेगा। इसलिए अभी नेक्स्ट लेवल की जरूरत पड़ी कि लोगों को हम लोग प्रेरित करें, ये जो चीज हम कृत्रिम चीजें बना रहे हैं उनको यूज करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें। वी प्रोपगेट, यू शुड यूज दिस, यू शुड यूज दिस. तो उसके लिए क्या मोहरा था? एडवर्टाइजमेंट, मीडिया. नेक्स्ट स्टेप मीडिया. तो मीडिया के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, कोई भी चीज बनती है, हमें नहीं पता है कि उसकी आवश्यकता है, लेकिन हमें मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें पता लगता है, ओ एक्चुअली यू नीड इट, इसके बिना आपका जीवन बेकार है. जब तक हमको दिखता नहीं है एडवर्टाइजमेंट, तब तक हमको पता लगता है कि जरूरत है. लेकिन फिर वो एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड्स, उसकी तरह में दिखता है. यू डोंट हैव दिस, ओ योर लाइफ इज वेस्ट, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस, व्हाट यू आर डूइंग. तो इस प्रकार से मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमको प्रेरित किया था. एक्चुअली इसके पीछे सिद्धांत काम कर रहा है बहुत सुंदर, प्रकृति के तीन गुणों का सिद्धांत. इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं. ये भौतिक इच्छाएं जिसे हम काम कहते हैं, काम वासना, ये प्रकृति के कौन से गुण से उद्भव होती हैं? रजोगुण से उद्भव होती हैं. तो अगर एक कंपनी के मालिक को अपना प्रोडक्ट बेचना है जिसकी कोई आधारभूत उपयोगिता किसी के लिए नहीं है, ये केवल आर्टिफिशियल नेसेसिटी है, आर्टिफिशियल लग्जरी है, तो उसे अपने प्रोडक्ट को यदि बेचना है, लोगों को प्रेरित करना है उसे खरीदने के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? लोगों के अंदर काम वासना की वृद्धि करनी पड़ेगी, रजोगुण बढ़ाना होगा. जब रजोगुण बढ़ेगा, काम वासनाएं बढ़ेंगी, तो धीरे धीरे लोग तैयार हो जाएंगे सब कुछ खरीदने के लिए. इसलिए आप देखिए, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का बेस क्या है? हाउ टू मेक पीपल मोर एंड मोर लस्टी, कैसे लोगों को अधिक से अधिक कामुक बनाया जाए. इसलिए आप देखिए, इधर बड़ा दुर्भाग्य की बात, लेकिन ये सटीक सत्य है. हर एडवर्टाइजमेंट में कुछ स्त्रियों को लगाया जाता है, उनका फोटो लगाते हैं. वाई? काम वासना में बढ़ोतरी करने के लिए. और जैसे जैसे व्यक्ति कामुक होगा, तो वो हर चीज खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएगा, क्योंकि फिर जीवन का सिद्धांत बन जाएगा, एंजॉय एज मच एज यू कैन, जितना हो सके एंजॉय करो, सब कुछ एंजॉय करो, कुछ भी मत छोड़ो, ये वो. यही भारत में क्यों, गो टू सिंगापुर, सी, गो एंड देयर परचेज, डू मार्केटिंग इन दुबई, डू मार्केटिंग इन सिंगापुर, तो फिर इसका कोई अंत नहीं है. जब काम वासनाएं बढ़ाई जाएंगी, फिर आदमी धीरे धीरे तैयार हो जाता है सब कुछ एंजॉय करने के लिए, सब कुछ खरीदने के लिए. तो इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप हुआ कि हम ये जो है पूरे समाज को प्रेरित किए, आप अपनी लोभ को, लोभी हो जाओ, कहीं रुको मत, सब कुछ आगे बढ़ाते रहो अपनी इच्छाओं. ठीक है, अब इच्छाएं बहुत बढ़ गई, सब कुछ खरीदने की इच्छा है, हम संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज से, सब कुछ खरीदने, सब कुछ एक्सपीरियंस करने की इच्छा है, लेकिन समस्या क्या है? पैसा. समस्या है पैसा. पैसा तो लिमिटेड है, अभी क्या किया जाए? अभी पैसा लिमिटिंग फैक्टर बन गया कि पैसे की वजह से आगे बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है. ये जो विकास होना चाहिए, विकास में अवरोध क्या हो गया? पैसा. लोगों के पास पैसा कम है. तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि बिना पैसे के भी हम चीजें खरीद सकें, उसके लिए क्या आयोजन किया गया? लोन सिस्टम नहीं, उसका नाम दूसरा दिया गया, क्रेडिट सिस्टम. क्योंकि लोन था सुनने में झटका लगता है, ऐसे लोन नहीं, क्रेडिट सिस्टम. यस, ईएमआई. ओके, और सोफिस्टिकेट टर्म आया अभी. हाँ, तो क्या है, डोंट वरी अबाउट मनी, पैसे की चिंता मत करो. आप हमारे शोरूम में आओ और 2000 रुपए में कार ले जाओ, दैट्स इट. पैसे की चिंता मत करो, 2000 रुपए आओ और कार ले जाओ. नहीं समझी? ओके. तो अभी हमारी संस्कृति है कि उतने पैर फैलाओ जितनी चादर हो. लेकिन फिर चौथा स्टेप में क्या सिखाया गया? चादर की चिंता मत करो, बस पैर फैलाओ. हमारी वैदिक संस्कृति का नियम है कि तीन चीज हो उनको इमरजेंसी समझो, उसका तुरंत उपाय करो. क्या क्या है वो चीज? अग्नि, रोग और ऋण. ये तीन चीज यदि आपके ऊपर है, तो आपको तुरंत उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट मत करो. अगर बीमारी, अगर आपके घर में आग लगी है, तो आप नहीं कह सकते ठीक है आग लगी है, पहले टीवी देखूंगा बाद में आग लगी. आग लगी में सबसे पहले आपको वो काम करना पड़ेगा. बीमारी है तो ऐसा नहीं ठीक है बीमारी बाद में देखेंगे, नहीं, बीमारी सबसे पहले उसको, बीमारी को ठीक करना. और उसी प्रकार से यदि आपके ऊपर ऋण है, तो सबसे पहले आप ऋण चुकता करो. लेकिन ये चौथे सिद्धांत में बिल्कुल उल्टा सिखाया जा रहा है, ऋण की चिंता मत करो. ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, चार्वाक मुनि फिलॉसफी. अरे तुम्हें घी पियो चाहे ऋण की चिंता, ऋण करके पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमं भवेत्। क्योंकि ये जो भस्मीभूत देह है, किसने देखा कि दोबारा आने वाला है? तो अगर ऋण होकर के मर जाओ तो भी क्या प्रॉब्लम है? इसलिए जो भी हो येन केन प्रकारेण एंजॉय करो, ऋण लेकर के करो, जैसे भी करो। एग्जैक्टली ये सिद्धांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आज का ये पूरा सभ्यता इस प्रकार से इन चार सिद्धांतों के द्वारा पनपा है। वो 200 साल में जो पूरा विकास हुआ है उसके पीछे जो फैक्टर्स रहे वो ये चार स्टेप्स के थ्रू आज ये स्थिति है कि आज हर आदमी की कोई इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं है और लोन के द्वारा किसी भी तरीके से वो कर रहा है। इसका प्रभाव क्या हुआ है, इसका प्रभाव क्या हुआ है हमारे शरीर पर, क्या हुआ है हमारे मन पर, और क्या हुआ है हमारे हम पर, आत्मा पर? तो जिस सभ्यता में जो आज खड़ी हुई है, क्या वो शरीर के लिए हष्टपुष्ट है? क्या वो शरीर के लिए अच्छी है? तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता बढ़ रही है लोगों के शरीर कमजोर हो रहे हैं, आयु घट रही है। आप सब एग्री करते हैं? हम सब अपने दादा को देखते हैं, उनके शरीरों को देखते हैं, बुखार तो उनको याद करना पड़ता है कब मैं उनको बुखार हुआ। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है, छोटे छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन है। तो सिंपल यदि हम एक नजर में भी देखें तो हम देख सकते हैं कि जैसे समय बीत रहा है हमारा ये शरीर जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, गोइंग डाउन, डिग्रेड हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, वो सब विदित हैं और थोड़ा सा हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि इस हेल्थ के लिए क्या चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी हवा चाहिए और मन की शांति चाहिए, और आज ये तीनों ही फैक्टर गड़बड़ाए हुए हैं। अच्छा खाना मतलब हम जाके US पिज्ज़ा में पिज़्ज़ा खा सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है? सेहत के लिए क्या चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अन्न, ये चाहिए। लेकिन आज जो हम खा रहे हैं आप जानते नहीं हैं शायद, सबका, कई लोग जानते भी होंगे शायद, कुछ लोग जो हम ये सब्जियां खा रहे हैं उनको कैसे, जो खेती में जो हो रहा है वो क्या क्या उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, और क्योंकि वो बहुत शुरू से डाले जाते हैं तो वो पूरे प्लांट के सिस्टम में एंटर करते हैं, और इसीलिए वो पूरे अनाज में और जो फल जो हम खा रहे हैं उसमें सब में एंटर होते हैं। हम कभी कभी देखते हैं, हम खाते हैं और खाने के बाद बड़ा सिरदर्द हो गया, कुछ हो गया, हम सोचते हैं पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन वास्तव में अधिकतर उसका कारण होता है कि जो हम खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। अगर आप किसी खेडूत से मिलें, किसान से मिलें, आपका वो मित्र होगा तो आपको बताएगा आज का जो खेडूत है, किसान है, अपने खेत में उगी हुई चीज नहीं खाता है, अपने खेत में लगाई हुई सब्जी नहीं खाता है, जो वो कॉमर्शियल लेवल पर जो कार्य कर रहा है वो खुद नहीं खाता, क्योंकि उसे पता है कि मैं क्या डाल रहा हूं। यदि वो आपका हितैषी बोलेगा कि इसे मत खाना, अगर कोई बुद्धिमान खेडूत है तो वो अपनी खेती अपने खाने के लिए अलग करता है जिसमें केमिकल्स नहीं डालता है। अर्थात जो हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो हमारी सेहत के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो हम ये शरीर के स्तर पर ही जो पूरी इकोनॉमी हमने डेवलप की है उसका हमारे मन पे क्या फर्क पड़ रहा है? आज हमें ये जो खाना जमीन से मिल रहा है लेकिन उसके लिए सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें कुछ और पैदा करना पड़ रहा है, किसी फैक्ट्री में जाए कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें बनानी पड़ रही हैं, और जिसमें बहुत हैवी कॉम्पिटिशन है, मार्केट है, बहुत जटिलताएँ हैं, और उस जटिलताओं के द्वारा जो हम पैसा प्राप्त करते हैं उस पैसे से फिर हम खरीदते हैं वो चीज़ खाने के लिए। यानी एक बहुत जटिल सिस्टम के थ्रू हम अपनी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इन जटिलताओं की वजह से मन की क्या स्थिति हो रही है कि बहुत चिंताओं युक्त है। इस शरीर को मेंटेन करने के लिए ही हमको बहुत सारी चिंताएं, एंग्जाइटीज लेनी पड़ रही हैं। सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, सिस्टम्स फेल होते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका फिर मेंटेनेंस प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रकार से ये शरीर की जो आवश्यकताएं हैं जिस प्रकार से आधुनिक जगत में हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा मन चिंताओं से युक्त हो जाता है। और एक और मुख्य बात, जब ये आधुनिकीकरण प्रारंभ होता है तो होता तो ये है कि भाई देखो हम आपको लग्जरी दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे होता क्या है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है तो वो लग्जरी नहीं रह जाती है, मात्र एक आवश्यकता बन जाती है। अभी आज के शहरीकरण में क्या एक व्यक्ति के लिए कार रखना या बाइक रखना क्या वो लग्जरी है? वो मात्र एक और आवश्यकता है जीने के लिए, इस आधुनिक शहर में जीने के लिए मात्र एक और आवश्यकता है। आपको अपने जॉब पे जाने के लिए आवश्यकता है बाइक या कार, वो भी लग्जरी कहां रह गया? लग्जरी नहीं रह गया। तो जो चीज शुरू में लग्जरी थी, अभी तो वो आपकी आवश्यकता बन गई। इसीलिए अंततः क्या हुआ, आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई, और आवश्यकताएं बढ़ गई मतलब उसके लिए एंडेवर बढ़ गया, और वो एंडेवर बढ़ने का परिणाम क्या हुआ कि जो हमारा मन है वो अधिक चिंतित है, परटर्ब्ड है। तो इसलिए जो वर्तमान सभ्यता है वो शरीर किलिंग है, बॉडी किलिंग है, और धीरे धीरे वो माइंड किलिंग है, और एक और दृष्टि से माइंड किलिंग है। किस दृष्टि से? हमारे वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी है, मेंटल सेटअप है, तीनों गुणों के मिश्रण के द्वारा, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। इसीलिए हर व्यक्ति का एक प्रकार का कार्य है, जिस कार्य को करने में वो ही फील्स सेटिस्फाइड। अगर उसको दूसरा कार्य करने में कहा जाए तो वो, जैसे अभी राजन प्रभु कह रहे थे आपका अनुभव कि सबका भक्त है लेकिन सबका अलग अलग सेवा करने का रुचि रहती है, किसी को एक प्रकार की सेवा करने की रुचि, किसी दूसरे प्रकार की सेवा करने की रुचि, सबको एक ही कार्य नहीं है, सबको अलग अलग कार्य है। तो उसी प्रकार से वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत हर व्यक्ति के लिए उसकी साइकोलॉजी के अनुसार, उसके मेंटल सेटअप के अनुसार उसके लिए कार्य है। इसीलिए जब व्यक्ति अपना कार्य करता है तो उस कार्य को करने के समय में वो संतुष्ट अनुभव करता है। तो इसी प्रकार, इसलिए ये जो वर्णाश्रम है उसमें चार वर्ण है और चार आश्रम है। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण जो है वो कौन कौन से गुणों से, कौन से गुण से संचालित हो रहा है? सत्वगुण से। सत्वगुण के लक्षण क्या क्या हैं? तो उसके ब्राह्मण के गुण क्या क्या हैं सत्वगुण की वजह से? क्षमा दमा तितिक्षा क्रांति आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव च। तो सत्वगुण के कारण उसके अंदर ये लक्षण आते हैं, और इसीलिए उसके जो कार्य हैं ब्राह्मण के वो क्या हैं? शिक्षा देना, और उसको डिटेल में हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, पढ़ना पढ़ाना, भगवान की पूजा करना, दूसरों को सिखाना, और दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना और दान देना। तो ये सब जो व्यक्ति सत्वगुण में है उसकी मानसिकता के अनुसार उसके लिए ये बेस्ट कार्य है, जिससे वो एफिशिएंटली कर सकेगा, एफिशिएंटली कर सकेगा, और उसको करने में पूरा संतुष्ट अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कौन से गुणों से संचालित है? रजोगुण से संचालित है। इसलिए क्षत्रिय के गुण क्या बताए गए हैं? शौर्यम, दाक्ष्यम, युद्धे चापि पलायनम, युद्ध से ना भागना, शौर्य, वीरता, लीडरशिप, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, सबको एंगेज करना प्रॉपरली, ये सब कार्य हैं क्षत्रिय के। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल सेटअप उस प्रकार से है, वो उस कार्य को कर सकता है एफिशिएंटली, मोस्ट एफिशिएंटली कर सकता है, और करते हुए ही विल फील सेटिस्फाइड। थर्ड वैश्य। वैश्य कौन कौन से गुणों से संचालित है? रजोगुण और तमोगुण से संचालित है। इसलिए वैश्य के जो कार्य हैं वो क्या हैं? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये उसके कार्य हैं। तो उसी प्रकार से वैश्य, उसके अंदर ये एबिलिटी है रजोगुण तमोगुण के मिश्रण के कारण कि वो उत्पादन, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, प्रोडक्शन कर सकता है, और उसका दिमाग उसी में चलता है। आप देखिए, आप सब ज्यादातर यहां पर वैश्य, तो हमारी जो वृत्ति है, तो जैसे एक प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ए वैश्य, एक वैश्य कैसे पता लगे कौन है वैश्य। तो एक आदमी था बंगाल में, अकाल प्लेग फैला हुआ था, प्लेग, तो प्लेग में प्लेग फैला हुआ था, और एक आदमी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। तो वो अपने मित्र के पास आता है कि आप मुझे थोड़ा पैसा दो, मुझे बिजनेस शुरू करना है। तो उसका मित्र बोलता है, सामने सड़क पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था, वो रहा पैसा, क्योंकि उस समय स्कीम था कि जो मरा चूहा म्यूनिसिपल में, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में जमा करेगा उसको कुछ पैसा मिलेगा, है या प्लेग फैला हुआ। तो इसीलिए वो मरा चूहा लेके गया और वहां से पैसा लिया, और उस बहुत थोड़े से पैसे से शुरू करके वो एक दिन कलकत्ता का एक बहुत बड़ा रईस आदमी बना। ये करेक्टरिस्टिक है एक वैश्य, वो किसी भी चीज से पैसा बना सकता है। कहीं से भी पैसा दे सकता है। एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि अगर कोई आदमी कहीं जंगल जा रहा है, जंगल में है कोई, अगर एक ब्राह्मण जा रहा है तो वो उसको अलग दृष्टि से देखेगा, एक वैश्य जा रहा है अलग दृष्टि से देखेगा, शुद्ध जा रहा है अलग दृष्टि से देखेगा। एक ब्राह्मण जा रहा है जंगल में, बहुत शांत जगह है, यहाँ शास्त्रों का अध्ययन करूँगा, उसका ये दृष्टिकोण होगा। क्षत्रिय होगा, ओ जंगल है कुछ शिकार करूँगा। वैश्य है, बहुत लकड़ी है, लकड़ी बेच के पैसा कमाऊंगा। इस प्रकार से सबका अलग अलग वृत्ति, अर्थात कहने का तात्पर्य ये, बहुत डिस्टिंक्टली हम देख सकते हैं कि हम जो भी हैं, हम सबकी मेंटेलिटी अलग अलग है, मेंटल मेकअप अलग अलग है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति की उसकी मानसिकता को देख करके उसको कार्य दिया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हमने बात की वर्णों की, उसी प्रकार से पुरुष और स्त्रियों की मेंटेलिटी भी बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए उनके वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर उनके फंक्शंस भी अलग अलग है। लेकिन आज के समाज में क्या हो रहा है, सबके लिए एक ही फंक्शन है, सबके लिए एक ही है, सब एक ही एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं, सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है और सबको जॉब करना है, अब सबको। तो इससे हम देखते हैं क्या होता है, बच्चे हम एक्सपीरियंस करते हैं कॉलेज पिचिंग में, रो रो के बच्चे पढ़ते हैं, क्या करें, मूड नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन और पास भी नहीं हो पा रहे हैं। MBBS करते हुए हमारे ऐसे ऐसे लड़के थे जो 6 साल की जगह 10 साल होने पर भी अभी थर्ड ईयर में थे, लगे हुए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, बिकॉज दे आर सिचुएटेड रॉन्गली, गलत जगह पर, लेकिन क्या पीछे से डंडा पड़ रहा, नहीं तुम्हें यही बनना है, नहीं तो हमारे समाज में क्या होगा, तुम कैसे जियोगे। इसलिए सबको एक ही रास्ते पर चलाया जा रहा है, बिना इसका ध्यान रखे कि किस व्यक्ति की क्या योग्यता है, उसका क्या साइकोलॉजी है। स्त्री पुरुष के लिए सबके लिए एक ही है, स्त्रियों को भी वही एजुकेशन सिस्टम, उनको भी वही जीविका कमानी है, उनको भी वही डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और इसको गर्व दिया जाता है। क्या है आज गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का फार्मूला, गुजरात की नारी ऐसे बहुत सारे हैं, हम किसी से कम नहीं। इस तरह से हम पूरी तरह से ये नकार रहे हैं कि स्त्री, उनका मेंटल सेटअप, उनकी वृत्ति, उनका इंक्लिनेशन के अनुसार उनको कार्य दिया जाना चाहिए। सबका फंक्शन है सोसाइटी में, लेकिन सबका अलग अलग है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं शरीर के अलग अलग अंग हैं, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। बुद्धि का काम ब्रेन को करने दीजिए, रक्षा का काम हाथों करने दीजिए, ऐसा नहीं सोच सकते कि हाथ पैर का काम करे तो क्या करेगा, इनएफिशिएंटली करेगा, सही से नहीं कर पाएगा और खुद परेशान होगा वो करेगा। तो उसी प्रकार से हमारे मन के स्तर पर ये वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमारी इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल नीड्स पूरी होती हैं, इसलिए मन संतुष्ट रहता है, शांत रहता है। इसके विपरीत आधुनिक सिस्टम में, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए सब डिस्टर्ब्ड है, सब डिस्टर्ब्ड है इस तरीके से। फिर थर्ड लेवल, सोल लेवल, जब शरीर परेशान है, मन परेशान है, तो इसका प्रभाव आत्मा में पड़ता है, वर्तमान से, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में, इसलिए स्वाभाविक रूप से नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस समय हम देहात्म बुद्धि में, इसलिए हमारे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें मन को संतुष्ट कैसे किया जाता है, सॉरी आत्मा को संतुष्ट कैसे किया जाता है, तो आत्मा की संतुष्टि किसमें है, भगवान का गुणगान में। तो नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम से प्रारंभ होने वाली नवविधा भक्ति में है आत्मा की संतुष्टि। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का अर्थ है, चाहे कोई किसी भी वर्ण का हो, चाहे कोई किसी भी आश्रम का हो, चाहे कोई स्त्री और पुरुष हो, सबके लिए कुछ एक्टिविटीज कॉमन है, कॉमन सामान्य है, सब वर्ण सब आश्रम के लिए। वो क्या एक्टिविटीज हैं, श्रवणम कीर्तनम, ये एक्टिविटीज जो है वो कॉमन है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर की एक्टिविटीज हैं जो कॉमन है सबके लिए। इसीलिए आत्मा का संतुष्टि के लिए हर वर्ण और आश्रम के लिए है ये नवविधा भक्ति। और ये नवविधा भक्ति करने के लिए समय चाहिए ना, फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग वी नीड टाइम एंड वी नीड पीसफुल माइंड। तो वर्णाश्रम व्यवस्था वो व्यवस्था है जो हमें पर्याप्त समय और पर्याप्त माहौल देता है ये नवविधा जो भक्ति के अंग हैं इनको कार्य करने के लिए। यदि आज भक्तों के समुदाय में पूछा जाए, आपको अपनी भक्ति सेवा करने के मार्ग में, साधना करने के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या क्या अटक रही है, नो टाइम, सबसे बड़ी समस्या सबके सामने क्या है, नो टाइम। तो वर्णाश्रम व्यवस्था सोल के लिए नरिशिंग है, क्यों, क्योंकि वो एक तो हमें पर्याप्त समय उससे मिलता है, क्यों, क्योंकि हमारी माइंड और लेवल की आवश्यकताएं इस प्रकार से पूरी होती हैं जिससे हमें अननेसेसरली उसके ऊपर व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रकार है, तरीका है, जिसकी वजह से वर्णाश्रम के अंतर्गत हमारी आत्मा का पोषण होता है। तो भगवद गीता में हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं, यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी तपस्या, जो भी दान कर रहे हो, वो सब मुझे अर्पित करो। वर्णाश्रम व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें शरीर और मन के स्तर पर जो हम कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए, शरीर संबंधी जो भी हमारे कार्य हैं, वो सब कार्य को हम डायरेक्टली भगवान को अर्पित कर सकते हैं। केवल भक्ति 2 घंटे जप के समय के लिए ही सीमित रहने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे हर कार्य करते समय हम भगवान की भक्ति सेवा कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था वो सुंदर व्यवस्था है जिससे ये जो चार वर्ण, ये जो विभाजन है, जो हमारा ये ऑक्यूपेशन है, कार्य है, वो सब कार्य डायरेक्टली भगवान को ऑफर्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। जैसे हम देखें, एक वैश्य जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अंदर वैश्य, वो क्या काम कर रहा है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो कृषि कर रहा है, तो खेती कर रहा है, तो खेती का प्रोडक्शन क्या है? अनाज, सब्जी। तो डायरेक्टली वो उसको भगवान को पहले भोग लगाए। जब वो कार्य कर रहा होगा तभी वो इसी चेतना में कार्य करेगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर के अंदर जो भगवान विद्यमान है उनके भोग के लिए मैं सामग्री तैयार कर रहा हूं। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स बना रहा है, परफ्यूम्स बना रहा है, या कुछ कलपुर्जे बना रहा है, या कुछ, अभी वो किस चेतना में, कैसे वो सोचेगा कि भगवान के लिए मैं कर रहा हूं? या इस तरह सोच सकता है, इससे जो मुझे पैसा मिलेगा उसे भगवान को दूंगा, दैट्स ओके। लेकिन कम से कम वो जो कार्य कर रहा है उसको करते हुए सोचना कि मैं इस भगवान के लिए कर रहा हूं, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि मत करो और हम उसे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता के अंतर्गत भगवान बोलते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य विरता सम सिद्धिम लभते नरा। आप अपने कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने कार्य से भगवान को भजिए, तो वो चांस, अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के द्वारा कि हम अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करके आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था में तीनों स्तर पर हमारा पोषण करती है और आधुनिक व्यवस्था तीनों स्तर पर हमारे रास्ते में रुकावट डालती है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम एक बहुत सुंदर श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बता रहे हैं अभी प्रभुपाद, और शास्त्रों से हम सुनेंगे, जो अभी हमने तीनों लेवल देखे उसके बारे में संस्तुति हमारे शास्त्रों से हम उसको अभी देखेंगे कि जो हम डिस्कस किए कैसे वो सब शास्त्रों, कैसे वो प्रभुपाद जी उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो ये वर्णन है युधिष्ठिर महाराज के राज्य का। युधिष्ठिर महाराज के राज्य, युधिष्ठिर महाराज जो भगवान के भक्त थे और सभी लोगों को भगवान की भक्ति सेवा में नियोजित करते थे, उनके जीवन, उनके समय में क्या स्थिति थी? कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही शिशिशु स्व व्रजान गावह पयसोधस वतेर्मुदा। During the reign of Maharaj Yudhishthir, the clouds showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of man in profusion. Due to its fatty bag, milk bag, and cheered attitude, the cow used to moisten the grazing ground with milk. Maharaj Yudhishthir के समय पर बादलों से पर्याप्त मात्रा में बारिश होती थी, धरती पर्याप्त मात्रा में सब उपजाती थी, और जो गायें हैं वो इतनी सुखी रहती थीं कि वो जो चारागाह है वो उनके दूध से भीगता था। नेक्स्ट पर्पट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेंटर्ड ऑन लैंड एंड काउज। द नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, मिल्क, मिनरल्स, क्लोदिंग, वुड एटसेट्रा। One requires all these items to fulfill the material needs of the body. Certainly one does not require flesh and fish or iron tools and the machinery. During the regime of Maharaj Yudhishthira, all over the world, there were regulated rainfalls. Rainfalls are not in the control of the human being. The heavenly king Indradev is the controller of rains and he is a servant of Lord. Should I translate? Do I need to translate in Hindi? क्या मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करनी जरूरत है? तो प्रभुपाल लिख रहे हैं कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक आवश्यकताएं वो ये हैं, दूध, ग्रेन्स और कुछ कपड़ा और कुछ लकड़ी. हमें आवश्यकता नहीं है फ्लैश मांस की, मच्छी की और कुछ आयरन टूल्स या मशीनरी की. और जहां तक बारिश की बात है, क्योंकि बारिश जो है हमारे द्वारा नहीं होती है, वो इंद्रदेव के द्वारा होती है, और जो इंद्रदेव भगवान का दास है. When the Lord is obeyed by the king and the people, जब राजा और प्रजा के द्वारा भगवान के आदेशों का पालन होता है, under the king's administration there is regulated rains from the horizons, तब पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है. And these rains are the causes of all varieties of production on land. Not only do the regulated rains help ample production of grains and fruits, but when they combine with astronomical influences, there is ample production of valuable stones and pearls. न केवल पर्याप्त मात्रा में बारिश होने पर अनाज उत्पन्न होता है, बल्कि सही प्रकार से बारिश होने पर नक्षत्रों के द्वारा, नक्षत्रों के योजना से अलग अलग बहुमूल्य रत्न इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं. Grains and vegetables can sumptuously feed a man and animals, and fatty cow delivers enough milk to supply a man sumptuously with vigor and vitality. If there is enough milk, enough grains, enough fruit, enough cotton, enough silk, and enough jewels, then why do the people need cinema houses of prostitution, or actually cinema houses or prostitution, slaughterhouse, etc.? Cinemas, houses of prostitution. अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, फल उपलब्ध हैं, कॉटन उपलब्ध है, सिल्क उपलब्ध है, जेवल्स उपलब्ध हैं, तो फिर हमें ये सब आवश्यकताएं क्यों हैं? स्लॉटर हाउस, कतल खानों की, सिनेमा की और वेश्याघरों की. यस. व्हाट इज द नीड ऑफ एन आर्टिफिशियल लग्जूरियस लाइफ ऑफ सिनेमा, कार्स, रेडियो, फ्लैश एंड होटल्स? हैज दिस सिविलाइजेशन प्रोड्यूस्ड एनीथिंग बट क्वरलिंग इंडिविजुअली एंड नेशनली? Has this civilization enhanced the cause of equality and fraternity by sending thousands of men into a hellish factory? ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं. इस सभ्यता ने क्या दिया है हमें? हजारों लोगों को hellish factory. आप में से कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? So, what is the atmosphere of factories? Is Prabhupada saying right? Hellish factories. क्या वातावरण है उनका? पार्डन, गटर्स, यस, वेरी वेरी वर्स्ट conditions. नॉट ह्यूमन, आदमियों के रहने के लिए वातावरण नहीं एक्चुअली. ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेटीरियल नेचर विदाउट आर्टिफिशियली अटेम्प्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू टर्न द वर्ल्ड इन टू अ chaos ऑफ आर्टिफिशियल ग्रीड एंड पावर only for the purpose of artificial luxuries and sense gratification. This is but the life of dogs and hogs. This is so strong words, Prabhupada words. ये जो artificial economic development है, जिससे केवल लोभ पनपरा है, वो वास्तव में, और ये जो artificial luxury का जीवन है, अनावश्यक इंद्रिय भोग का जीवन है, वो केवल सुकरों और कुकरों का जीवन है. Next slide. Association. Can we come to this slide later on? We are dealing now. Next slide. Yeah. तो इस प्रकार से हम इस श्लोक में देखे कि हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, वो कैसे आसानी से प्रकृति पर निर्भर होकर रह सकते हैं. तो अभी हम shall we take a break for some time? Need it? 5-10 minutes? 5 minutes or so. पानी वानी पीना है. तो अभी थोड़ा 5 या 10 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं, पानी पीना इत्यादि, थोड़ा फ्रेश होकर के दोबारा से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे इस विषय के. ओके. तो हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम फंक्शन करता है तीन स्तर पर, शरीर मन और आत्मा तीनों संतुष्ट करता है। यह आत्मा सुप्रसिद्धति वो परम धर्म है, और वर्णाश्रम जिससे आत्मा शरीर और मन तीनों संतुष्ट होते हैं, जिससे हम तैयार होते हैं भगवत धाम के लिए, शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो अभी ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे हम लोग आने वाले हैं, इसलिए हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे प्रैक्टिकल इस जीवन की आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होंगी, होती हैं आदर्श तरीके से वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत, तो उस विषय को हम लेके चल रहे हैं। अभी हम क्या क्या मुख्य पहलू हैं हमारे जीवन में, इस भौतिक जगत के अंतर्गत जो हम हैं, इस शरीर को संबंधित, मन को संबंधित क्या क्या मुख्य पहलू हमारे सामने हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, जिसको हमको अच्छे से टैकल करना पड़ता है, नहीं तो वो हमको परेशान करते हैं और भक्ति में बाधक होते हैं अगर ढंग से टैकल नहीं हुए। एक एक बताएंगे कोई एक एक पहलू जो आपके दिमाग में है।
भोजन
एक, वो तो यहाँ पर लिखा है। ओके, फिर और
निद्रा।
ओके, आलस। ओके, हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हेल्थ वन इज फूड, हेल्थ दूसरा, वेल्थ ओके, प्रॉस्पेरिटी। ओके, एनवायरमेंट एग्जैक्टली आप क्या उससे एग्जैक्टली एसोसिएशन। ओके, पॉजिटिव एनवायरमेंट फॉर डिवोटीज मीन्स डिवोटी एसोसिएशन। तो हम लोग चाहते हैं कि एसोसिएशन केवल संडे में एक घंटे नहीं हो, क्या चाहते हैं हम लोग, 24 घंटे 7 दिन हो, करेक्ट एसोसिएशन। देन और कोई पहलू जीवन का, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेज, टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम होना चाहिए। देन और कोई विषय जो आप दिमाग में जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन से
संबंधित,
टाइम समहाउ, मेंटल पीस, पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट कंसर्न, सेटिस्फैक्शन, ओके दैट्स माइंड, मेंटल लेवल, मेंटल सेटिस्फैक्शन। ओके, और कोई विषय, बच्चों से संबंधित भी कोई हो सकता है, सोचिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्या है, चाइल्ड एजुकेशन, संस्कार पार्ट ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन। ओके, एंटरटेनमेंट। ओके, एंटरटेनमेंट, और कोई विषय, फैमिली लाइफ, कंजीनियल रिलेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स, परिवारजनों के बीच में अच्छे संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और कोई विषय, हाउसिंग, घर, ये बहुत बड़ा विषय है ना सबके सामने, हाउसिंग। देन इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है भी, ट्रांसपोर्टेशन,
प्राकृतिक
जलवायु, ओके प्राकृतिक वातावरण को उस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से ये जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं वर्णाश्रम धर्म की आधारभूत परिभाषा को सुन लेने के बाद कि कैसे वो हर स्तर पे काम कर रहा है। तो दो तरफ, एक तरफ वर्तमान समय और एक तरफ आदर्श वर्णाश्रम समाज। तो हम लोग अभी एक एक विषय के ऊपर जाएंगे कि कैसे वो विषय आदर्श वर्णाश्रम व्यवस्था में पूरा होता है और आधुनिक व्यवस्था में किस प्रकार से वो हमें इम्प्लीकेट कर रहा है। तो पहला आइटम हम ले रहे हैं भोजन, खाना। ये इस शरीर की सबसे आधारभूत आवश्यकता है, भोजन, खाना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यस वी आर वर्किंग, वी आर नॉट सिटिंग आइडल। तो हम भक्त हैं, इस भौतिक जगत में हम हैं, तो हरे कृष्ण जप करना हमारे जीवन का सार है। लेकिन क्योंकि अभी शरीर है तो शरीर यापन भी करना है, वी अंडरस्टैंड दैट, हम एस्केपिस्ट नहीं हैं। लोग बोलते हैं आप क्या बस केवल हरे कृष्ण मंत्र ही करते हैं, तो भगवान कि जो भगवत गीता है वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। कई बार लोग आरोप लगाते हैं आप तो बस हरे कृष्ण काम नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं है। भगवत गीता का संदेश ये नहीं है आप काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम काम गधों की तरह नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू वर्क लाइक एसेस, वी वांट टू वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग्स। हम मनुष्य की तरह काम करना चाहते हैं जिससे हम भगवान की भक्ति में प्रगत हो। तो वो काम करने की विधि है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वी आर नॉट सिटिंग आइडल, हम निठल्ले नहीं बैठे हैं। नो नाउ फॉर आवर फूड, इफ वी जस्ट गेट सम फूड बाय प्लॉइंग सम लैंड फॉर द एनिमल काउज एंड फॉर मी, एंड द काउ इज गिविंग मी मिल्क, द ट्री आर गिविंग मी फ्रूट, व्हाई शैल आई वर्क सो हार्ड। द बिजनेस ऑफ डॉग्स एंड हॉग्स होल डे एंड नाइट सिंपली वर्किंग फॉर गेटिंग फूड एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज नॉट सिविलाइजेशन। लिव पीसफुली, गेट योर नाइस फूड एंड सेव टाइम टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो खाने के विषय में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि उसके लिए पूरा दिन रात यदि आपको मेहनत करनी पड़े तो वो मनुष्य जीवन की प्रगति नहीं है, वो शर्म की बात है। कि गधा भी इतना काम नहीं करता जितना हम लोगों को काम करना पड़ रहा है अपने खाने अपने पेट को चलाने के लिए। तो गधे के अंदर बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि है, लेकिन फिर भी हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आज का व्यक्ति सामान्य रूप से, आज हम हर दिन कितना घंटा हमको परिश्रम करना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य रूप से। कम से कम 10-12 घंटे तो ऑफिशियल मिनिमम टाइम है। अगर एक्चुअली आप चिड़ियाओं को देखें, कुछ जानवरों को देखें, तो एक्चुअली उनकी स्थिति हमसे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं, हम बोलते हैं जानवर बन जाओगे तो बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, अच्छा है क्योंकि हमने एक ऐसा समाज खड़ा कर दिया है कि जिसमें लगता है कि जानवर भी हमसे अच्छे हैं। टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे उठते हैं, फिर चिंता नहीं कि उठने के बाद कि खाना होगा कि नहीं, पता है क्या। तो प्रभुपाद ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें अपनी पुस्तकों में दिए हैं कि जब भगवान सब जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था किए हैं तो आपके लिए क्यों नहीं किए, इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? आप क्यों सोच रहे हैं कि जब तक हम ये कृत्रिम व्यवस्था को नहीं चलाएंगे तब तक हम भूखे मरेंगे, क्यों सोच रहे हैं? ये वो लोग की विचारधारा है जो सोच रहे हैं कि करता हम, मैं ही करने वाला हूं, ये कोई भगवान होगा नहीं है, ये सब ऐसे ही बना हुआ है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे व्यवस्था तो भूखे मरोगे। ये वो अज्ञानता पर आधारित है कि नहीं, नित्य नित्य नाम चेतन चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामा। वो एक भगवान ने ऑलरेडी हम सबके आवश्यकताओं की पूर्ति का मैनेजमेंट अरेंजमेंट किया हुआ है, हमें आवश्यकता है उस अरेंजमेंट को समझने की, देखने की। एक्चुअली समझना तो जानवर भी समझते हैं, मुश्किल नहीं है, जस्ट उसको देखने की और उसके अनुसार जीने की, दैट्स इट। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत आसानी से हम अपना जो आवश्यकता है वो डायरेक्टली जमीन और गाय से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डोंट थिंक दैट यू आर प्रोड्यूसिंग योर फूड स्टफ, यू आर प्रोड्यूसिंग योर नेसेसिटीज, डोंट थिंक, नो, यू कैनॉट डू एनीथिंग, ही इज प्रोवाइडिंग, गॉड इज प्रोवाइडिंग यू, गॉड इज गिविंग यू। We are mad after economic development from morning to late at night, in our cars, in our trucks, we are going hither and thither. But there are many, many millions of living creatures, they have no economic problem. Who is providing them? Who is providing them? Providing? Krishna is providing them. Vishnu is providing them. Okay? तो हम लोग सोच रहे हैं जब तक हम ये ट्रकों में सुबह से रात तक भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, इतना प्रयास नहीं, तब तक हमें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन कौन दे रहा है लाखों लाखों जीवों को खाना, जिनके यहाँ कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मनुष्य समाज में ही समस्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ये एक कृत्रिम हमारे द्वारा बनाई गई समस्या है आसुरी विचार से कि हम असत्यम प्रतिष्ठम थे जगत आहु अनीश्वरम, इस जगत का कोई 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 प्रतिष्ठा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब बाई चांस है, और यहाँ पर सब एकत्र हो और अपनी शक्ति के अनुसार हड़प लो जितना हड़प सको। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन्स प्रिंसिपल। तो वो डार्विन जैसे लोगों के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो लोग नहीं सोच रहे हैं कि भगवान जिसने सबके लिए व्यवस्था की है, देन वाई टू स्ट्रगल अननेसेसरली। स्ट्रगल मीन्स यू हैव टू डू द नीडफुल, कुछ काम करना है। एक पिता है, पिता ने आयोजन किया है, बिजनेस सेटअप है, बच्चे को पिता के आदेशों का पालन करना है, सैंक्शन इज ऑलरेडी देयर। उसे प्रयास करना होगा कितना, सप्लाई को टैप करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने उसको स्विच को प्लग करना होगा। उसी प्रकार से भगवान ने सब आयोजन किया हुआ है, हमें केवल उतना एंडेवर करना है कि उस आयोजन से उसको लेना है। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, अपना पूरा आयोजन बना रहे हैं, नया आयोजन बना रहे हैं, और हमारा आयोजन और भगवान के आयोजन की कोई सीमा, कोई तुलना हो सकती है? देख रहे हैं क्या तुलना है, उसकी वजह से खुद फंसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सिस्टम को नहीं नकार रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैनी मे क्लेम दैट इन द मॉडर्न एज मेटेरियल साइंटिस्ट हैव हेल्प इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड। क्योंकि ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं कि अगर ये फर्टिलाइजर नहीं होते, अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता, आप सब सुने ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अगर ये नहीं किया होता आदमी, अगर ये इन्वेंशन नहीं की होती, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होते, तो क्या होता? जनसंख्या बढ़ रही है और ये जनसंख्या भूखी मरती यदि साइंटिस्ट लोग ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बट वी फियरलेसली प्रोक्लेम दैट इट इज प्रिसाइसली सच एथिस्टिक व्यूज दैट हैव ब्रॉट द वर्ल्ड टू द प्रेजेंट एक्यूट फूड क्राइसिस। इफ वी आर नॉट केयरफुल द डे विल सून कम व्हेन फ्रूट्स विल बी रिड्यूस्ड to just skin and seed, cows udders will dry up and paddy fields will grow only grass. The scriptures predict that these things will come to pass in Kali Yuga. जिस रास्ते हम चल रहे हैं, जो सोसाइटी चल रही है, ये उसका अंत है, ये उसका परिणाम होने वाला है कि दिन आएगा जब फ्रूट्स जो है वो केवल स्किन रह जाएगी और सीड रह जाएगी। और हो रहा है, फ्रूट्स में टेस्ट नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, जूसलेस टेस्टलेस फ्रूट्स, न्यूट्रिशनलेस फ्रूट्स, क्योंकि हाइब्रिड हैं सब, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ना तो कोई न्यूट्रिशन वाली ना तो कोई टेस्ट वाली सब्जियाँ हैं। जो लोग कभी जो थोड़ा समय जो खेती में कहीं गांव में रहे हो वो कंपेयर कर सकते हैं, आज का जो हम जो फूड ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, टेस्टलेस, इसलिए उसमें बहुत स्पाइसिस और बहुत कुछ कुछ डालना पड़ता है। लेकिन पहले आप डायरेक्ट खेत का लेंगे, बिना कुछ डाले भी वो टेस्टी होगा और बहुत न्यूट्रिशियस होगा। पैडी फील्ड में केवल घास उगेगा, अनाज नहीं उगेगा, केवल घास उगेगा। ये हो रहा है, जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जमीन पूरी बंजर होती जा रही है, पूरी बंजर होती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रभुपाद, दिस इज सोल किलिंग सिविलाइजेशन, दिस काइंड वे ऑफ लाइफ, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, एनी वेयर यू कैन, ओ सॉरी, वी हैव कम टू सेकेंड चैप्टर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेल्टर। घर के लिए क्या करें, घर के लिए क्या करें, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है कि रहने के लिए क्या करें। तो आजकल की व्यवस्था है कि रहने के लिए शहरों में क्या व्यवस्था है, रहने के लिए हमारे फ्लैट्स, मल्टी स्केपर बिल्डिंग्स, स्काई स्केपर बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसमें हम रहते हैं। और हम सोचते हैं कि एक्चुअली अगर हम इसमें नहीं जीते होते और वो जो पिछड़ा हुआ गाँव में मिट्टी के मकान में रहना, ओ हो हो कितना मुश्किल है और कितना पिछड़ा हुआ है और कितना बेकार है। लेट्स सी प्रभुपाद क्या कहते हैं उस विषय में। प्रभुपाद कह रहे हैं नीचे वाला स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस कंफर्ट ऑफ द स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, आई थिंक इट इज ए मैकेनिकल प्रिजन। प्रभुपाद कह रहे हैं जिसे हम लग्जरी समझ रहे हैं, एक्चुअली वो लग्जरी नहीं है, वो मैकेनिकल प्रिजन है। यू सी नाउ, विदाउट फैन देर इज नो एयर, विदाउट लाइट देर इज नो, कोई प्रकाश नहीं है, इट्स अ मैकेनिकल प्रिजन। एक छोटी सी जगह में हम लोग को बंद करके रहना पड़ता है, देर इज नो फ्रेश एयर, देर इज नो नेचुरल लाइट, 24 घंटे आर्टिफिशियल लाइट रहना पड़ता है और ACs और पंखे चलाने पड़ते हैं, और धरती से बहुत ऊपर आकाश में लटक रहे हैं, अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा पता नहीं, सो मैनी थिंग्स, और हम इसको लग्जरी सोच रहे हैं एक्चुअली, बट इफ बिकॉज वी आर कंडीशन। जैसे मैं एक भक्त से मिला बॉम्बे में, तो मैं वो लोकल ट्रेन में सफ़र करना पड़ा, तो मैं उसको बता था, मैंने कहा कितना हॉरिबल कंडीशन है, आप कैसे रहते हैं बॉम्बे में? तो बोले कि प्रभु जी यदि हम किसी दिन ये लोकल ट्रेन में नहीं चलते हैं तो हम सो नहीं सकते हैं, हमको स्पेशली फिर शाम को हम लोग निकलते हैं कि कहीं थोड़ा सा ट्रैवल करें लोकल ट्रेन में, क्योंकि हमको लगता है कि लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया तो दिन पूरा नहीं हुआ हमारा, अभी क्या अभी इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि वो जो मुझे जो हम लोग उसमें नहीं है, हमें वो हॉरिबल कंडीशन लग रही है, लेकिन वो लोग जो उसमें रह रहे हैं दे फील इट वेरी नाइस। तो ये माया के प्रभाव से है कि हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी परवरिश पूरी इसी वातावरण में हुई है, इसलिए हमें लग रहा है कि एक्चुअली ये कंफर्ट है, क्योंकि हमने वास्तविक कंफर्टेबल लाइफ को जिया नहीं है, और ना केवल जिया है बल्कि केवल सुना है कि वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत खराब है, वो बहुत बेकार है, ऐसा हमको पूरा प्रोग्राम किया गया है हमारी टेक्स्ट बुक्स के द्वारा, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, कि वो पिछड़ा हुआ जीवन था। क्या था? पहले तो हम बंदर थे, शुरुआत में तो पहले तो हम बंदर थे, आदमी नहीं थे, पहले तो हम बंदर थे, क्योंकि डार्विन के पिताजी बंदर थे। और वास्तव में प्रभुपाद बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री में लोग हैं वो तो वास्तव में बंदर के ही प्रजा हैं। उनके लिए सही है वो डार्विन सिद्धांत रखा, दे आर रियली प्रोजेनी ऑफ मंकीज। तो उनके पूर्वज बंदर थे, फिर बंदर से आदि मानव बने, और फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि मानव बने और धीरे धीरे देखा आग है, और धीरे धीरे फिर कुछ छाल पहनना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे कुछ जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और मांस खाना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो खेती कर सकते हैं, तो इस प्रकार से वो थोड़ा खेती करना शुरू किए, और इस प्रकार से धीरे धीरे कुटिया में रहते थे, और फिर धीरे धीरे फिर एडवांसमेंट हुआ। तो उनके अनुसार ये जो मॉडर्न एडवांसमेंट है ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सबूत है, ये जो एडवांसमेंट है ये इवोल्यूशन थ्योरी का सबूत है। कि देखो पहले लोग कुटिया में रहते थे, अभी ये बिल्डिंग में रहते हैं, ये सबूत है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं। इसी का मतलब है कि हम पहले एक दिन बंदर थे। लेकिन अगर हम उन्हीं की परिभाषा से देखें तो क्या हम वापस आदि मानव नहीं बन रहे? खेती करना सीखे और आजकल फिर दोबारा से 5-star होटल में जाके मांस खा रहे हैं, वही आदि मानव जो हंटर जो पत्थर मार के जानवर मार रहा था, आज उसको सिविलाइजेशन का सबसे ऊपर का अंग माना जाता है। सो एक्चुअली बाय देयर डेफिनेशन ऑल्सो दे आर कमिंग बैक टू बिकमिंग आदि मानव। एनीवे, तो हमारी वैदिक संस्कृति नहीं बताती कि हम पहले बंदर थे और इस प्रकार से हम जीते। तो हमारी वैदिक संस्कृति बताती है कि चाणक्य पंडित प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, पूरे सम्राट थे चंद्रगुप्त, उनके प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो कहाँ रहते थे? कुटिया में रहते थे। तो कुटिया में रहना गरीबी का मानदंड नहीं है, कुटिया में रहना कोई पिछड़ापन नहीं है, लेकिन हमें ऐसा सिखाया गया है दैट पर्स इफ यू लिव इन कुटिया कॉटेज दैट मीन्स यू आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, ऐसा सिखाया गया है, एंड दैट मीन्स यू आर आप पिछड़े हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं एनीवेयर यू कैन इनहैबिट इट इज नॉट डिफिकल्ट, अ कॉटेज यू कैन प्रोड्यूस योर ओन फूड एनीवेयर, और एम आई राइट? यस, वी विल डू इट। तो वास्तव में रहने के लिए ये जो व्यवस्था है जिसमें हम धरती से डायरेक्ट जो प्रोडक्शन होता है बंबू इत्यादि उनको यूज करके सिंपल घर बनाते हैं, हर दृष्टि से वो अच्छा है। एक्चुअली अगर आप उसको डिटेल में देखें, शायद इस सेमिनार में उसमें डिटेल में पूरे से ना जा पाएं, मिट्टी के घर सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं, बनाने की कॉस्ट नेग्लिजिबल, और जमीन का आजकल तो जमीन लेना ही सिटी में, जमीन अपनी जमीन लेना इससे जमीन कहाँ होता है, इतने सारे माले हैं उसमें से आप शेयर करेंगे जमीन का क्या टुकड़ा आएगा आपके पास? नथिंग आएगा, जमीन आएगी, यस, हवा हवा है। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत वो जमीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इतनी बड़ी खेती पे आप जी रहे हैं तो उसमें एक जगह पर अपना घर बनाना क्या मुश्किल है। लेकिन क्योंकि आज हम सब शहर में आकर के इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए हमें ऊपर ऊपर जाना पड़ रहा है, जमीन के ऊपर ऊपर जाना पड़ रहा है, और इसलिए वैल्यू जमीन के रेट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आए और धीरे धीरे फैले वापस, तो देखेंगे कि जमीन कभी वो खरीदने का विषय भी नहीं था, खरीदने का विषय नहीं था वो जमीन, क्या वो खरीदना पड़ेगा? जमीन एक रहने की आवश्यकता है, जितने भी लोग हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन है सबके लिए। लेकिन क्योंकि हम शहरों में सब आ गए हैं इसलिए अभी यहां पर जमीन का एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो गया है, और फिर उसके ऊपर मकान बनाने का कॉस्ट हो गया। इसलिए आज एक व्यक्ति को अपना घर बनाना ये एक बहुत बड़ा सपना है, जिसको पूरा करने के लिए उसे पूरा जीवन कठिन संघर्ष करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और उसके बाद अनेक प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। तो इतना जटिल हो गया है ये कार्य घर बनाने का, और वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये बड़ा सरल है। और रहने का आयोजन क्या है, आज हम बोलते हैं ये कितने घर है, मेरा एसेट्स क्या है, एसेट्स क्या है, मेरा घर ओके इसका वैल्यू है 40 लाख, इतने का मेरा एसेट, मेरा घर है 30 लाख, पर एक्चुअली घर का आयोजन प्रयोजन क्या है? इट्स ए प्लेस टू लिव, दैट्स इट, चाहे वो 40 लाख का है 40 करोड़ का है, उसका हेतु क्या है? अ प्लेस टू लिव, अ प्लेस शेल्टर, दैट्स इट, करेक्ट? तो लेकिन आप देखिए हमको ट्रेन किया जाता है, नो, इफ यू आर लिविंग इन अ हाउस ऑफ 20 लाख, इट इज बेटर देन लिविंग इन अ हाउस ऑफ 10 लाख। तो इस प्रकार से ये शेल्टर के ऊपर प्रभुपाद जी का कोटेशन। नेक्स्ट स्लाइड, हेल्थ, एक विषय जो हमने देखा, क्या है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा, वृंदावन गांव या ये शहरी जीवन। प्रभुपाद लिखते हैं, डिसाइपल बोलते हैं, द कंट्री इज मोर पीसफुल, इट्स इजियर टू थिंक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद कहते हैं यस, देयर इज लेस डिजीज, एवरीथिंग इज लेस ब्रेन टैक्सिंग, हर चीज अच्छा स्वास्थ्य और हर चीज कम ब्रेन टैक्सिंग है। तो आज हम देखते हैं कि आधुनिक उसमें मॉडर्न मेडिसिन बहुत डेवलप हुई है, सो मच डेवलपमेंट, लेकिन एक्चुअली वो डेवलपमेंट ये दिखाता है कि हमारी हेल्थ बहुत खराब हो रही है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन डेवलप हो रही है। हॉस्पिटल्स ओपनिंग मीन पीपल आर मोर डिजीज्ड, हम लोग उसको प्रगति का सूचक लेते हैं, जी नाउ वी आर सो मेनी हॉस्पिटल्स, बट दैट मीन्स वी आर मोर डिजीज्ड, उसका मतलब है कि आप ज्यादा बीमार हैं। तो इस विषय पर हम पहले भी थोड़ा चर्चा कर चुके हैं। सामान्य रूप से हम देखें, प्रभुपाद जी अन्यत्र भी कहते हैं, खुले वातावरण में रहना, फ्रेश फूड लेना, फ्रेश फूड, प्रभुपाद बोलते हैं द फूड विच यू आर टेकिंग टूडे इज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड, थाउजेंड इज जंक, जो आप सब्जी ले रहे हैं कब मार्केट में आ रही है, कौन उसको उगा रहा है, इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड, कितना समय तो उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लगा, फिर मार्केट में आया, फिर आपने खरीदा और फिर बनाया और फिर बनाने के बाद फ्रिज में रखा और फ्रिज में रखे और फिर दो दिन तीन दिन के बाद खाया, कंप्लीटली अगेंस्ट फ्रेश फूड। और फिर उस फूड की जो फ्रूट वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ नहीं है, और फिर उसके अंदर जो जहर बोला जाए, एक्चुअली हमारे पास एक वीडियो है पूरा इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर, कैसे पूरा जहर खा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली एवरी डे, और फिर हम बोलते हैं कैंसर कहाँ से हो रहा है, सो मेनी कार्सिनोजेंस, हम जो खा रहे हैं, हम जो एनवायरमेंट में जो ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं, इससे फिर कैंसर हो रहा है। और फिर हम बोलते हैं मैन हैज मेड प्रोग्रेस, नाउ इज इन्वेंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, बट फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड कैंसर, व्हाट अबाउट दैट, पहले आपने कैंसर को बनाया है, जन्म दिया है और फिर उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसपोर्ट, ये भी एक बड़ा विषय है कि ट्रांसपोर्ट में क्या होगा हमारा, यातायात के साधन, कार चाहिए, तो इसका क्या उपाय है वैदिक संस्कृति के अंतर्गत। प्रभुपाद, यस द ऑक्सन विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट ऑक्सन बुलक कार, जस्ट लाइक कृष्णा, सी प्रभुपाद इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ कृष्णा, व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम गोकुल टू नंदग्राम, सो दे टुक ऑल द बुलक कार्ड्स एंड विद इन अ फ्यू आवर्स दे ट्रांसपोर्टेड देम, द होल थिंग, देयर लगेज, फैमिली मेंबर, एवरीथिंग। भगवान, हाउ फार कैन ए बुलक कार ट्रेवल इन वन डे, एक दिन में बुलक कार कितना दूर जा सकता है। प्रभुपाद, एटलीस्ट 10 miles, वेरी इजिली, एंड मैक्सिमम ही कैन ट्रेवल 15 miles, 20 miles, बट वैन वी आर लोकलाइज्ड वी डोंट रिक्वायर टू गो बियॉन्ड 10 miles, 5 miles, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ रबिश सिविलाइजेशन, देयरफॉर वन इज रिक्वायर्ड टू गो 50 miles फॉर अर्निंग ब्रेड, 100 miles हैंगिंग। इज इट ट्रू और नॉट, आज की जिस सभ्यता जो हमने बनाई है उसमें हमको कितना दूर कितना समय जाना पड़ता है, एवरेज 1 to 2 hours मॉर्निंग एंड 1 to 2 hours इवनिंग हैंगिंग, नॉट इन पीस हैंगिंग, क्राउडेड बसेस, क्राउडेड प्लेस, और इवन इफ यू आर इन अ कार इन ए ट्रैफिक जैम यू हैव टू गो, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन ये पूरी बड़ी समस्या का समाधान क्या है, जस्ट इफ यू आर लोकलाइज्ड, अगर हम एक ही स्थान पर के अंदर अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा करें, देन यू डोंट नीड टू ट्रेवल, देन द ट्रेवलिंग इज ओनली फॉर प्लेजर, पिलग्रिमेज, ओनली फॉर दैट यू नीड टू ट्रेवल देन। लेकिन अभी हमारे लिए ट्रेवलिंग क्या है, एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, बर्डन है, यू हैव टू ट्रेवल। सोचने वाली बात है, ट्विन सिटी होते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, एक्चुअली मटेरियली आल्सो इफ यू थिंक इट कैन सॉल्व सो मच प्रॉब्लम, सो मच ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सो मच पेट्रोल, सो मच। नेक्स्ट स्लाइड, एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए एजुकेशन। प्रभुपाद, नो एजुकेशन, नो Education will be required only for the guiding class, Brahmana, Kshatriya, not for anyone, Shudras. They are two only. Others will, what education required? Suppose if you produce, if you are accustomed to agriculture, cow protection, there is no need going to college and schools. If you remain illiterate, still you can do. Abhi ye statement bahut revolutionary lagega sabko. But this is our Param Guru is saying. So now we have to understand why he is saying and what he is saying. Kya keh rahe hain Shri Prabhupada? Education. To aaj hamari jo shastra hain usme pandit kisko kaha gaya hai? Education prapt karke hum kya bante hain? Pandit bante hain. To pandit ki paribhasha kya di gayi hai? ओके पंडिता समदर्शना ओके और एक परिभाषा मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत सर्वभूतेषु आत्मवत यह पश्यति स पंडिता। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार पंडित है जिसके अंदर ये तीन गुण हैं जो जो दूसरे की पत्नियों को मां के समान देखे परदारेषु सॉरी मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत दूसरे की संपत्ति को पत्थर के समान देखे यूजलेस नॉट फॉर मी पत्थर है मिट्टी है और सर्वभूतेषु आत्मवत सबको अपने समान देखे कि दूसरे के दुख जो है वही मेरे दुख है जिसके अंदर ये तीन गुण है वो एजुकेटेड है और आज की परिभाषा क्या है एजुकेटेड की इससे उल्टा है कि नहीं आज हमारे स्कूलों में जो सिखाया जा रहा है जो वातावरण है स्कूलों में वो पूरा इन तीनों सिद्धांत के विरुद्ध है तो इसलिए क्या ये एजुकेशन है जो हम दे रहे हैं जो हम ले रहे हैं क्या वो एजुकेशन है तो वो एजुकेशन है किस लिए एक तो चरित्र हनन के लिए और दूसरा आर्थिक स्थिति के लिए एक्चुअली बेसिकली तो उसका कारण क्या है टू अर्न योर ब्रेड अपना जीविका कमाना ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य बट प्रभुपाल कह रहे हैं हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार एजुकेशन वॉज नेवर मीन्ड फॉर अर्निंग योर लिवलीहुड दैट इज नेचुरल जानवरों को एजुकेशन की जरूरत पड़ती है अपनी जीविका अर्जन के लिए अपने शरीर के मेंटेन के लिए नहीं तो फिर मनुष्य को क्यों एजुकेशन की जरूरत पड़ती नहीं एजुकेशन जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि हमारी जीविका के लिए हमें जो चाहिए हमने देखा उसके लिए हमें चाहिए हमारी संस्कृति के अनुसार हमें चाहिए वो कृषि गोरक्षा और क्या कृषि के लिए हमें स्कूल और कॉलेज में जाने की जरूरत है नहीं वो तो हम आसानी से फील्ड में रहकर एक किसान से बड़ी आसानी से जिसके अंदर वैश्यवृत्ति है उसको ट्रेनिंग दिया जाए बड़ी आसानी से वो सीख सकता है उसके लिए उसे 25 साल आज हमें हमारे बच्चों को अपने जीविका अपने पैर पर खड़ा होने के लिए एक बच्चे को कितना साल मेहनत करनी पड़ती है जरा विचार कीजिए अपने पैर पर खड़ा होना शुरू करने के लिए कितने साल लगते हैं 25 से 30 साल लगते हैं लेकिन 25-30 साल में कितना लोन उसके ऊपर हो जाता है कई कई लाख लोन तो पहले तो जब जीविका शुरू करेगा तो पहले तो लोन उतारेगा तो इस तरह से कहीं 40 साल की उम्र में जाकर के बच्चा 35-40 साल की उम्र में जाकर के वास्तव में अपने पैर पे खड़ा शुरू यानी कि आज बच्चे एक बहुत बड़ा एक बर्डन उनकी एजुकेशन का है माता पिता के ऊपर क्यों ये हमारे द्वारा बनाए गए सिस्टम के अनुसार कि आपको टेक्निकल एजुकेशन लेनी पड़ेगी डिग्री लेनी पड़ेगी और फिर घर घर जाकर के मांगना पड़ेगा भिक्षा ये मेरी डिग्री है प्लीज गिव मी जॉब ये मेंटेलिटी क्रिएट की जा रही है डेवलप हो रही है हमारी आधुनिक सभ्यता के द्वारा लेकिन यदि हम समझें थोड़ा सा शांत दिमाग से कि प्रभुपाद जी जो हमें संस्कृति बता रहे हैं और जो हमारे शास्त्रों में लिखी है कितनी सुंदर वो व्यवस्था है कि बच्चा भगवान श्री कृष्ण कितनी आयु में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी आयु में गाय चलाना शुरू कर दिए 5 साल जब छोटे थे तो छोटी गाय और जब फिर बड़े हुए तो 5 वर्ष तो आप सोचिए कि वैदिक संस्कृति के अंदर बच्चा कभी माँ बाप के ऊपर एक्चुअली बर्डन होता ही नहीं बचपन से भी नहीं होता क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही खेल खेल में इकोनॉमिक दृष्टि से भी परिवार के लिए हेल्पफुल होना शुरू हो जाता है खेल खेल में खेल खेल में जैसे खेल खेल में बच्चे लकड़ियां इकट्ठी करते हैं खेल खेल में, जस्ट फन फॉर देम, एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर हाउस होल्ड थिंग्स. लेकिन आजकल बच्चे 25 साल तक तो घर के लिए प्रैक्टिकली कुछ यूजफुल नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल यूजफुल, केवल दे ओनली ट्रिक है, खर्चा करते बहुत सारे खर्चे करते. तो जस्ट सी, जस्ट कूलली वी हैव टू थिंक, वी आर प्रभुपाद फॉलोअर्स, वी आर थिंक व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, हाउ इंपॉर्टेंट इज सेइंग, इट्स अ रिवॉल्यूशन, इट विल हेल्प अस अ लॉट, इट विल हेल्प अस अ लॉट. कितना हमको ये फ्री करेगा हमारे बंधन जिनमें फंसे हुए हैं. मुश्किल लग सकता है हमें, लेकिन अगर उसको गहराई समझने की कोशिश करें तो ये एक पूरा बदलाव हमारे जीवन में ला देगा और जो हमें तैयार करेगा वो वृंदावन में जाने के लिए. हाँ, तो ये है एजुकेशन का. नेक्स्ट स्लाइड. यस यस, इट विल टेक टाइम, क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं इट्स कंप्लीटली 180 डिग्रीज डिफरेंट. यस, सो देयरफॉर दिस सेमिनार विल हेल्प अस टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. एक विचार देने के लिए कि कम से कम उसमें विचार करें, शुरू करें विचार करना. नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग. एजुकेशन टू ट्रेन द इनोसेंट बॉय टू बी ए सेंस ग्रेटिफायर एट द अर्ली एज व्हेन द चाइल्ड इज एक्चुअली हैप्पी इन एनी सर्कमस्टेंस इज द ग्रेटेस्ट वायलेंस. देयरफॉर ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांत गुरोर हितम. प्रभुपाद कह रहे हैं एक नादान बच्चे को जब वो किसी भी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है. आप जानते हैं बच्चे, बच्चे को नहीं चाहिए एसी और फ्रिज. बच्चा जिस वातावरण में रहेगा आप जिसमें रखेंगे ही विल लर्न टू बी सेटिस्फाइड इन देयर. ये बच्चे का स्वभाव है. ऐसा होने पर भी हम उसको ट्रेन करें सेंस ग्रेटिफायर में, इंद्रिय भोग में उसको ट्रेनिंग दें, तो वो सबसे बड़ी हिंसा है. इससे प्रभुपाद आधुनिक स्कूलों को क्या बोलते थे, स्लॉटर हाउस, कतल खाने. तो प्रभुपाद जी इसको ऐसे नहीं बोले कतल खाने, इसलिए बोले कतल कि हम एक नादान बच्चा जिसको जीवन, जिसको जो आया है इस समय भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए, उस बच्चे को, नादान बच्चे को हम भेज रहे हैं. वो तो नादान है, उसको हम भेज रहे हैं ऐसे सिस्टम में जिससे कि वो क्या बन के निकलेगा, सेंस ग्रेटिफायर बन के निकलेगा. भगवान का भक्त नहीं, सेंस ग्रेटिफायर बन के निकलेगा. वो संतुष्ट हो सकता था किसी वातावरण में, लेकिन हमने ट्रेनिंग दिया कि अभी उसे एसी चाहिए, अभी उसे बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, नहीं तो वो फील करेगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड. ऐसा हमने उसको बना दिया. इट्स द ग्रेटेस्ट वायलेंस. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ नेक्स्ट फैक्टर, टाइम, समय. तो भक्ति में प्रगति करने पर एक बहुत महत्वपूर्ण भक्तों के लिए एक विषय रहता है, अव्यर्थ कालत्वम. जैसे जैसे भक्त प्रगति करता है वो अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहता है. ये एक भक्ति में प्रगति का लक्षण है, अव्यर्थ कालत्वम. हम जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं. और चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि समय ज्यादा मूल्यवान है या सोने, सोना, समय, उसकी कोई तुलना ही नहीं है. हा? क्योंकि समय एक बार जो गया वो गया. अभी ये जो समय है 9:40, आज का ये दिन दोबारा नहीं आएगा. ये जो जीवन का क्षण हमारा आज गया वो उतना ही कम हो गया. तो इसलिए हम भक्तों के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा समय आवश्यकता से अधिक कहीं बर्बाद ना हो, कोई बर्बाद नहीं करे. वी शुड बिकम डिस्टर्ब्ड, वी शुड बिकम वेरी मच अनकंफर्टेबल यदि हमारा समय बर्बाद हो रहा है. करेक्ट. लेकिन आज जिस सिस्टम में हम रहे हैं, जिस जहां रह रहे हैं, हमारा समय को किल किया जा रहा है पूरी तरह से. तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यू वर्क जस्ट ए लिटिल जस्ट फॉर योर फूड इन द स्प्रिंग अ मंथ एंड अ हाफ एंड सो फॉर प्लांटिंग इन द फॉल अ मंथ एंड अ हाफ फॉर हार्वेस्टिंग एंड इन योर रिमेनिंग टाइम यू बिकम कल्चरली एनरिच्ड. यू एंगेज ऑल योर टैलेंट्स एंड एनर्जीज फॉर रियलाइजिंग गॉड और कृष्णा कॉन्शियसनेस. दिस इज आइडियल लाइफ. तो जब हमारा जीवन सादा जीवन आश्रित होता है लैंड और काउस पे, तो हमें कितना काम करना पड़ता है, एक महीना स्प्रिंग और एक महीना एंड हाफ, वन एंड हाफ मंथ देयर, वन एंड हाफ, प्रॉब्ली 3 to 5 months इन ए ईयर, 8 hours a week, 8 hours a day मैक्सिमम. प्लीज नोट डाउन, 8 hours a day मैक्सिमम फॉर 3 to 5 months. और आज की स्थिति 10 to 12 hours a day, 6 hours a week, 6 days a week थ्रू आउट द ईयर. 7 डेज एंड सिचुएशन बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट. और वो जो 8 घंटे हैं उसमें भी इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर हेक्टिक, प्रेशर बहुत ज्यादा है. करेक्ट. तो आज जो बात का टाइम है उसमें बस हम सांस ले रहे हैं किस तरह से, वही बहुत है. जस्ट टू दोबारा से शक्ति मिल जाए दोबारा से पिसने के लिए, दैट्स इट. दैट मच एनर्जी वी आर गेटिंग रिगेनिंग. तो समय हमारा बहुत बहुमूल्य है और वो इस प्रकार से जा रहा है. लेकिन उसके विपरीत जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अंदर हमें भरपूर समय मिलेगा, हाँ, कि हम अपने समय को कृष्ण भावनामृत के लगा सकें. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट कम हैप्पी फैमिली लाइफ. हम सभी चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन बहुत स्मूथ हो, संबंध बहुत अच्छे हों. तो प्रभुपाद बताते हैं क्या है हैप्पी फैमिली लाइफ. प्रभुपाद कह रहे हैं एनी वे वी कॉल ठेला, एक ठेला इन इंडिया. सो द ठेला इन दैट कार्ट देर वॉज सफिशियंट लोड. सो वन साइड ऑफ द ठेला देर वॉज वाइफ एंड अदर साइड वॉज द हस्बैंड एंड दे हैड अ लिटिल चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड वॉज ऑल्सो पुट ऑन द लोड यू सी एंड दे वर पुलिंग. दैट मीन्स द हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग एज गॉड हैज गिवन दैम टू वर्क. सो दे आर वर्किंग टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. सो आफ्टर अर्निंग मनी दे विल गो होम. दे हैव गॉट अ लिटिल कॉटेज एंड द वाइफ विल कुक, द हस्बैंड विल ईट एंड दे आर पीसफुल. इट डज नॉट मैटर वेदर फर्स्ट क्लास ईटिंग सेकेंड क्लास, इट डज नॉट मैटर, बट स्टिल दे हैव गॉट अ होम एंड दे लिव पीसफुली. द वाइफ कुक्स फॉर द हस्बैंड एंड द हस्बैंड ईट्स एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो टेकन केयर, इट इज नॉट किल्ड, देयर इज पीसफुलनेस देयर इज. तो जहां पर पति पत्नी साथ में रह सकें, पत्नी पति के लिए बनाएं और फिर पति खाए और सब परिवार के जन मिलकर के खा सकें, रह सकें, बात कर सकें, तो वो है हैप्पी फैमिली लाइफ. लेकिन उसके विपरीत हमारा जो आधुनिक समाज है उसमें क्या हो रहा है, पति शहर के एक कोने में है, पत्नी देश के एक कोने में है, और पत्नी देश के एक कोने में है, एक लड़का देश के दूसरे कोने में है, लड़की देश के दूसरे कोने में है, और हार्डली समय मिलता है सबको एक साथ बैठ करके बात करने के लिए, खाना खाने के लिए, सब लोग इतने बिजी हैं. और जो समय है तो उसमें भी हम अपने टेलीफोन में अन्य चीजों में बिजी हैं. अर्थात जो पूरा फैमिली का कंसेप्ट है धीरे धीरे वो खत्म हो. एक्चुअली आप पाश्चात्य जगत में देखें जहां जिसकी नकल कर रहे हैं, जा रहे हैं, देयर इज नो फैमिली लाइफ लेफ्ट, जस्ट मदर डे एंड फादर डे साल में एक बार. सो लेकिन जब हम एक गांव के जीवन में रह रहे हैं, आपका व्यवसाय कहाँ है, वहीं है, राइट एट योर प्लेस, लोकलाइज आप सब. और केवल परिवार का मतलब नहीं है, हम दो और हमारे दो, उसमें एक बच्चा और एक कुत्ता, हमारे दो भक्ति का स्नान दो आजकल की परिभाषा, हम दो हमारे दो, हम दो एक बच्चा और एक डॉग, पेट डॉग नहीं. फैमिली मीन्स एक्चुअली द होल विलेज, बिग फैमिली. हम देखते हैं जो हमारा जो ग्रामीण जीवन, उसमें ऐसा नहीं कि ये कोई हमारा चाचा ताऊ तो है ही, बट एक्चुअली द होल फैमिली इज एज अ फैमिली, द होल विलेज इज एक्टिंग एज अ फैमिली. किसी का भी दुख है तो होल विलेज, ये सबका दुख है. किसी का भी सुख है, सबका सुख है. लेकिन आज क्या है, ये अपार्टमेंट और दूसरे अपार्टमेंट में कोई लिंक नहीं है, क्या वहाँ हो रहा है, क्या यहाँ, नो नो कंसर्न, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, क्या हो रहा है, या दैट्स व्हाट नेबर्स नोबडी नोस. तो क्या वो पारिवारिक जीवन, क्या वो पाए जीवन से संतुष्टि मिल सकती है, तो ये इसका दुष्प्रभाव है. नेक्स्ट स्लाइड. यस यस और नोबडी कुक्स, जस्ट परचेज समथिंग, पुट इन अ माइक्रोवेव, यू ईट व्हेन यू वांट, आई विल ईट व्हेन आई वांट, व्हेन आई एम देयर, दैट्स इट. नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट. आज के यूथ के लिए एक बड़ी प्रश्न है एम्प्लॉयमेंट. सो प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके विषय में, यस फर्स्ट ऑफ ऑल द होल सोसाइटी मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 4 वर्णस, अदरवाइज देयर विल बी कैओटिक कंडीशन. दैट इज व्हाट इज द पोजीशन नाउ, व्हाट इज ही, व्हाट ही हैज टू डू, वन डज नॉट नो, एंड देयर आर सो मेनी अनएम्प्लॉयमेंट. बट इफ यू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी इनटू वर्णस, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये हमारा सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट का. एक्चुअली फॉर प्रीचिंग सेक फॉर द होल वर्ल्ड दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है क्योंकि हम ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए हमें उपभोक्ता बनाने पड़ते हैं. इसलिए आज जॉब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप जो बना रहे हैं वो बेसिक नीड्स नहीं है। इसलिए आप जो मॉडल बना रहे हैं कल को हो सकता है उसकी आवश्यकता ना रहे, फेल हो जाए, इसलिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमेशा खाना पड़ेगा। उसका कोई नहीं है कि ठीक है आज आलू खा रहे हैं, कल को अभी आलू नहीं चाहिए खाने के लिए, कुछ और खाएंगे। फॉर ईटिंग वी हैव टू ईट एवरी टाइम थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड इन द कमिंग डेज सेम थिंग्स। और दूसरी ब्यूटी क्या है, द सिस्टम इज बैलेंस्ड, अ प्रोड्यूसर इज कंज्यूमर। हर आदमी प्रोड्यूस कर रहा है एंड ही इज कंज्यूमिंग, लेकिन आजकल प्रोडक्शन तो हो रहा है फैक्ट्रीज में अनलिमिटेड, बट देर इज नो कंज्यूमर। सो यू हैव टू क्रिएट कंज्यूमर्स। लेकिन वैदिक सोसाइटी में द इकोनॉमिक सिस्टम इज ए स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम, प्रोड्यूसर इज ए कंज्यूमर। तो इसलिए चिंता नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम, हर आदमी जिसका जन्म होगा ही विल प्रोड्यूस एंड ही विल कंज्यूम, सो देर इज नो इम्बैलेंस। लेकिन आज के जो सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल थिंग्स, सो इज ऑलवेज कॉज ऑफ एंग्जाइटी। तो प्रभुपाद जी इस बारे में एक डिक्टम दिए, एक फॉर्मूला जिसके आधार पर ये इकोनॉमिक सिस्टम वैदिक संस्कृति में चलता है, वो क्या है, प्रोड्यूस व्हाट यू नीड एंड कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस व्हाट यू नीड। ये प्रभुपाद जी का डिक्टम है इकोनॉमिक बैलेंस का, कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस, आप उसी चीज को भोग कीजिए जो आप उगा रहे हैं। कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ओनली व्हाट यू नीड। इफ यू फॉलो दिस, इफ यू मेडिटेट ऑन दिस वन स्टेटमेंट, इट कैन सॉल्व माइरेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। तो ये आधार है एम्प्लॉयमेंट का, तो देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट सोसाइटी। नेक्स्ट स्लाइड, पीसफुल माइंड, नेक्स्ट कंसर्न प्रभुपाद, यस इन द सिटी पीपल, व्हाट इज दैट, मस्ट पीपल मस्ट नेचुरली फॉल इन टू द मोड ऑफ पैशन, कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी ड्यू टू नीडलेस लस्टिंग एंड स्ट्राइविंग। इन द सिटी वी आर सराउंडेड बाई ऑल सोर्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स फॉर एजिटेटिंग अवर माइंड एंड सेंसेज, एंड नेचुरली वेन वी हैव दिस फैसिलिटी वी बिकम लस्टी, वी टेक टू दिस पैशनेट मोड एंड बिकम फिल्ड विद एंग्जाइटी। क्या नहीं हो रहा है आजकल? ये पहले मार्केट होते थे, लोग सोच के आते थे ठीक है मुझे जाना है वहां पर ही मिलेगा दुकान पर, लेकिन आज क्या है, लोग जाते हैं मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में, कि जाके देखेंगे कि हमें क्या लेना है, जाके पता लगेगा कि हमें क्या चाहिए, वहां जाएंगे तब पता लगेगा हमें क्या चाहिए। सो देन वी, अच्छा ये भी ले सकते हैं। सो इसलिए व्हेन यू कम आउट बैग फुल एंड योर पॉकेट इज एम्प्टी, एंड दे आर इन द एंट्रेंस, दे आर स्माइलिंग, वेलकम सर, वेलकम, वी आर योर वेल विशर्स, बट वॉट इज देयर वेल विशिंग, कि आपकी पॉकेट में आज जो कुछ है वापिस जाएंगे तो नहीं रहना चाहिए, ये उनका लक्ष्य है। और उसके लिए वो बहुत पॉलिश लैंग्वेज में हमको वेलकम करते हैं, वी फील व्हाट, हाउ नाइस, बट व्हाट इज इन देयर हार्ट, टेक आउट एवरीथिंग व्हाट इज इन देयर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो हर जगह ये विचलन हमारे को जो लस्टी बनाया जा रहा है, ग्रीडी बनाया जा रहा है, लोभी बनाया जा रहा है, इसकी वजह से मन हमेशा विचलित रहता है, एजिटेट होता है माइंड। हाँ, ये बिल बोर्ड्स, ये सिनेमा, ये टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब हमको एजिटेट कर रहे हैं हर क्षण हमारी इंद्रियों को। जब मन और इंद्रियां एजिटेट हो रही हैं तो फिर शांति का प्रश्न कहाँ है, और जब शांति नहीं है तो फिर जप में हम बोलते हैं प्रभु जी जप में ध्यान नहीं लगता है, मन बहुत भागता है, तो 24 घंटे में 8-10 घंटे तो बाहर पूरी तरह से अपने को एजिटेट कर रहे हैं, तो फिर कैसे वो 2 घंटे में, बड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल आता है उसकी वजह से, बहुत मुश्किल आता है, एजिटेटेड माइंड इज एजिटेटेड सो मच। नेक्स्ट स्लाइड, लाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग, सो उसके विषय में प्रभुपाद कह रहे हैं द पर्पज इज दैट यू ग्रो सम कैस्टर सीड, प्रेस इट, गेट ऑयल, पुट इन एनी पॉट एंड वन वीक द लाइट इज देयर। सो इवन अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव इंप्रूव्ड द लाइटिंग सिस्टम, बट दैट इज नॉट द ओनली नेसेसिटी ऑफ माई लाइफ, बट टू इम्प्रूव फ्रॉम द कैस्टर सीड लैम्प, कैस्टर ऑयल लैम्प टू द इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू वर्क सो हार्ड, यू हैव टू गो टू द मिडल ऑफ ओशन एंड ड्रिल इट एंड गेट आउट पेट्रोलियम, एंड इन दिस वे योर रियल बिजनेस ऑफ लाइफ इज फिनिश्ड। तो भगवान, पेट्रोल दे ऑल्सो यूज फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रभुपाद, नो, हीटिंग वी कैन डू बाई वुड, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम इतने आदी हो गए हैं ये इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली चीज़ों के, कि हम सोचते हैं कि इनके बिना क्या होगा, लाइट नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें ये जो लाइटिंग सिस्टम है इसका प्रयोजन क्या है? लाइटिंग चाहिए कि जब सूरज है तब हमें काम करना है और जब सूरज नहीं है तो रेस्ट लेना है। बेसिकली काम का समय है जब सूरज है, सूरज भगवान है, इसलिए मॉर्निंग टाइम टू वर्क, और जब सूरज नहीं है देन इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। तो इसलिए हमें जो हमारी वर्णाश्रम सिस्टम है उसमें लाइट हमें क्या चाहिए, वो शाम को सोने से पहले कुछ समय चाहिए और सुबह उठ करके चाहिए कुछ समय। किस लिए चाहिए? जस्ट टू वॉक अराउंड, केवल चीज दिखने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन आजकल क्योंकि लाइट है इसलिए आजकल क्या हो गया है, डे शिफ्ट्स नाइट शिफ्ट, बिकॉज नाउ वी हैव लाइट, नाउ वी कैन हैव अ डे टाइम फैसिलिटी इन द नाइट ऑल्सो, सो देयरफॉर नाउ वी आर एनकरेज टू वर्क इन द नाइट ऑल्सो। लेकिन जब लाइट ही नहीं है देन इट इज अंडरस्टूड नाइट इज नॉट टू वर्क, नाइट इज टू स्लीप। तो भगवान क्या कहते हैं भगवद्गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जो लोगों के लिए रात है वो, जो असुरों के लिए रात है वो भक्तों के लिए दिन है। तो हम देख सकते हैं कि आजकल रात को उनका दिन प्रारंभ होता है। कल ही सम म्यूजिक वॉज गोइंग ऑन होल नाइट, या क्योंकि उनका दिन प्रारंभ होता है वहां से, उनको रात को वो आती है, वो ऊर्जा आती है रात में। यस, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा आलस आता है, तो बिल्कुल उल्टा है, बिकॉज ऑफ दिस होल कल्चर दिस अफेक्टिंग अस। तो माना कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, दैट्स ओके, बट प्रोपा इज सेइंग ओके इंप्रूवमेंट है बट एट वॉट कॉस्ट, उसका हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं, दैट बिजनेस ऑफ लाइफ इज फिनिश्ड, वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड, फ्यूल क्राइसिस, बहुत बड़ी समस्या है फ्यूल क्राइसिस। जिस गति से हम जा रहे हैं, ये पेट्रोल एंड एवरीथिंग, ये नॉन रिप्लेनिशेबल सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो आज हर चीज के लिए हम निर्भर हैं पेट्रोल पर, ये बटन के लिए भी पेट्रोल पर निर्भर हैं, जीवन के हर एस्पेक्ट के लिए। ये खाने के लिए हम निर्भर हैं पेट्रोल पर, आप जानते हैं, अगर ये ट्रक्स नहीं होंगे तो खाना नहीं आएगा सूरत में, खाना नहीं आएगा, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो खाना बंद हो जाएगा। तो भगवान, बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ इज दैट दे हैव बिल्ट अप ए टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच देयर नीड्स आर ऑल कमिंग फ्रॉम पेट्रोल एनर्जी, टू प्रोड्यूस व्हाट दे नीड टुडे इज ऑल कमिंग फ्रॉम पेट्रोल एनर्जी, प्रभुपाद। सो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एज सून एज वी आर लोकलाइज्ड। पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, बट इफ यू आर लोकलाइज्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू डोंट रिक्वायर पेट्रोल। सपोज इन न्यू वृंदावन वी स्टे, वी डोंट रिक्वायर टू गो एनीवेयर, देन वेयर इज द नीड ऑफ पेट्रोल। यूनाइटेड नेशंस का एक सर्वे, रिसेंट सर्वे की एक रिपोर्ट है कि पूरे संसार के सब देशों को चाहिए, आवश्यकता है कि अभी वो लोकलाइज्ड इकोनॉमी पर आए, क्योंकि यदि खाने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो जैसे जैसे पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे खाने की कॉस्ट बढ़ रही है। तो धीरे धीरे सिचुएशन होगी कि खाने की चीज़ों की कॉस्ट इतने बढ़ जाएंगे कि एक ज़्यादा कम्युनिटी के लिए, मास के लिए खाना के लिए प्रॉब्लम, फूड क्राइसिस डेवलप होगा। फूड है बट बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट देयरफॉर फूड क्राइसिस विल बी देयर। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, सर्वे है, जो प्रभुपाद जी का आदेश है, जो उनका सुझाव है। टुडे यूनाइटेड नेशंस इज एक्सेप्टिंग दैट सेम थिंग दैट वी हैव टू बिकम लोकलाइज सूनर और लेटर। नेक्स्ट स्लाइड, क्लोथिंग, कपड़े के लिए क्या है, यहां पर क्लोथ मर्चेंट्स, करेक्ट, मोस्ट ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स, क्लोथिंग, वी कैन मेक अवर ऑन क्लोथ, खादी, गांधी जी ऑल्सो प्रभुपाद, यस, कॉटन, फ्रॉम कॉटन यू कैन मेक योर ऑन क्लोथ। धनंजय, माई वाइफ नोज हाउ टू स्पिन क्लोथ, प्रभुपाद, यस, बाई स्पिनिंग थ्रेड एंड यू मेक क्लोथ विदाउट एनी प्राइस, यू ग्रो योर कॉटन एंड हैव योर क्लोथ। नेक्स्ट स्लाइड, सेफ्टी, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जो हम नहीं मेंशन किए थे, सेफ्टी, सुरक्षा। तो हमारी सुरक्षा के लिए भौतिक जगत में क्या व्यवस्था है और आधुनिक जगत में क्या व्यवस्था है, वर्णाश्रम में क्या व्यवस्था है? प्रभुपाद कह रहे हैं, बाय जूमिंग अराउंड इन देयर कार्स एंड ट्रक्स दे हैव मेड देयर ऑन लाइफ डेंजरस एंड दे हैव क्रिएटेड डेंजर फॉर अदर्स ऑल्सो। एट एनी मोमेंट देयर मे बी एन एक्सीडेंट बट दे से दैट दिस इज सिविलाइजेशन। नॉनसेंस, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स कामनेस, प्रोस्पेरिटी एंड शांति, पीस। In peace and prosperity, one should be Krishna conscious always. How correct it is. Now today we are running around in cars. How dangerous it is. Any moment, accident and so much miseries or death. So are we safe today? From any angle we see. From financial angle or job security or health security. क्यों? क्योंकि हमने अपने को आधुनिक असुरों के हाथ में सौंप दिया है, उन पे विश्वास किया है, भगवान के विश्वास को छोड़ दिया है जो हमारे वास्तव में हितैषी हैं, उनके सिस्टम को छोड़ दिया है और असुरों के सिस्टम को अपना है, इसलिए नाउ वी हैव बिकम अनसेफ. नेक्स्ट स्लाइड. कंफर्टेबल लाइफ. अभी हमारे दिमाग में आता है, ठीक है वो बात सब सही है, लेकिन वो जीवन बड़ा ही कष्टदायक है. यहाँ पर कंफर्ट्स तो हैं, लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल. सो व्हाट इज एक्चुअली कंफर्टेबल लाइफ? प्रभुपाद इज सेइंग the sufferings of human society are due to a polluted aim of life, namely lording it over the material resources. The more human society engages in the exploitation of undeveloped material resources for sense gratification, the more it will be entrapped by the illusory material energy of the Lord, and thus the distress of the world will be intensified instead of diminished. The human necessities of life are fully supplied by the Lord in the shape of food grains, milk, fruit, wood, stone, sugar, silk, jewels, cotton, salt, water, vegetables, etc. in sufficient quantity to feed and care for human race of the world as well as the living beings on each and every planet within the universe. The supply source is complete. The supply source is complete. Krishna has already completed the supply source. जैसे electricity board has the network of electric connections, उसी प्रकार से भगवान ने हमारे लिए supply source complete connection दिया है. There is rain, there is land, there is production, there is seeds. What we have to do? The supply source is complete and only a little energy by the human being is required to get his necessities into the proper channel. You have to just channelize it. There is no need of machines and tools or use in steel plants for artificially creating comforts of life. Now the important statement. Life is never made comfortable by artificial needs, but by plain living and high thinking. This is the real definition of comfortable life. But to realize it, we have to experience it. क्योंकि अभी हमको उसका experience नहीं है, बिल्कुल हम उससे अलग जा चुके हैं. That's an important factor. But at least theoretically we can understand. Now, ki we are thinking that this is comfortable life, but actually comfortable life is there in Vrindavan. That life is real comfortable. From material point of view, all that is a real comfortable. Next slide. Now come prosperity. So, kya ye jo Vrindavan jeevan hai, kya wo garibi ka jeevan hai? Kya wo garibi hai? Kya ye adhunikikaran, kya ye shahri jeevan prosperity hai? So, we have to redefine even what is prosperity. क्या है प्रोस्पेरिटी? प्रभुपाद इन श्रीमद् भागवतम प्रॉपर्ट इज सेइंग, अकॉर्डिंग टू वैदिक इकोनॉमिक्स, वन इज कंसिडर्ड टू बी अ रिच मैन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ हिज स्टोर ऑफ ग्रेन्स एंड काउज. विद ओनली दीज टू थिंग्स, काउज एंड ग्रेन, ह्यूमैनिटी कैन सॉल्व इट्स ईटिंग प्रॉब्लम. ह्यूमन सोसाइटी नीड्स ओनली सफिशियंट ग्रेन एंड सफिशियंट काउज टू सॉल्व इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ऑल अदर थिंग्स but these two are artificial necessities created by man to kill his valuable life at the human level and waste his time in things which are not needed. Kya ye shabd? They are very strong words. Prabhupada keh rahe hain this is the real prosperity. Next slide. Okay, okay. If we depend on God's creation, there will be no scarcity. अगर हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे, उनकी व्यवस्था में रहेंगे, डरिए मत कि क्या होगा, हमें कुछ कमियां होंगी, कुछ खाना कम होगा तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि ये सब चीजें निर्भर हैं भगवान के आदेश पर. जैसे कल ही राधा जी बोल रहे थे, दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस प्रोस्पेरिटी डज नॉट कम बाई मैन, दिस बाई ह्यूमन एफर्ट्स, बाई नॉट बाई ह्यूमन एफर्ट्स, बाई गॉड्स ग्रेस. इक्षता, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, वेन गॉड इज happy with us, when we are following, then there is enough rain, then there is enough production, and then we are really rich, really prosperous. Vrindavan mein Nand Baba, he is very rich, he is very prosperous. Why? Because there are lakhs of cows, and there's enough food grains. That is the rich. Ghee, makhan, this is the real prosperity. Not this, some plastic and some iron things, iron age, when the iron age. That is not real prosperity. If we depend on God's creation, there will be no scarcity, but simply ananda, bliss. God's creation provides sufficient grains and grass, and while we eat the grains and fruits, the animals like the cows will eat the grains, grass. The bulls will help us produce grains, and they will only take little, being satisfied with what is we throw away. If we take fruit and throw away the skin, the animal will be satisfied with the skin. In this way, with Krishna in the center, there will be full cooperation between the trees, animals, human beings and all living entities. This is Vedic civilization, a civilization of Krishna consciousness. Next slide. Rains. Sometimes we worry, ki rains ka kya hoga? Prabhupada ka kya uska solution hai shastra mein? Rains kyon nahi hongi? Rains kaise hongi? Anna bhavanti bhutani parjanyad ansambhavah. Yagna bhavanti parjanya. Let them engage in kirtan. Let them engage in kirtan. If we are devotees, if we are Krishna conscious, there will be more water for gardening and it will be moist and then produce your fodder for the animals and food for you. And animals give you milk. That is Vrindavan life. So we need not worry about rains. If we have to worry today, because aaj rains kam ho rahi hai and irregular ho rahi hai. Kyun? Because we are killing cows and we are doing abortion and we are not following Krishna's instruction. So therefore Prakriti is withdrawing. Prakriti khinch rahi hai. Prakriti hamari sevak nahi hai, Bhagwan ki sevak. If we become, agar hum Bhagwan ke aadesh ka paan nahi karenge, then nature is not happy to provide us. Phir hum bhubar ban jate hain. Burden on earth. Otherwise Prabhupada says, next slide, when it will come. Okay, this is the previous slide. Prabhupada bolte hain, there is no scarcity of land and production. There is only scarcity of Krishna consciousness. Earth has sufficient, God has sufficient means to feed all of us. The only problem is, we are atheists. Next slide. Cities are going to crumble. Prabhupada's prediction, cities are going to crumble actually. ये जो सिविलाइजेशन है शहरी ये टिकने वाली नहीं है ये टिकने वाली नहीं है हम कितना भी इससे अटैचमेंट हमारा हो लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये टिकने वाली नहीं है इट इज डिस्ट्रक्टिव ये डिस्ट्रक्शन की तरफ है देयर विल बी नो सिटी वी डोंट वांट सिटीज भगवान व्हाट अबाउट अवर सिटी टेम्पल्स नो फॉर द टाइम बींग इट मे गो ऑन बट एज वी मेक प्रोग्रेस देयर विल बी नो सिटी द नेसेसिटी सिटी मीन्स फॉर द प्रेजेंट वी हैव गॉट बिकॉज द सिटी इज देयर वी आर देयर बट सपोज द सिटी इज क्लोज वी शैल बी देयर If the city is closed, we shall be there. तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारे शहर में मंदिर हैं और बहुत प्रचार हो रहा है तो ये जो हम कह रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमें गांव बसाना चाहिए वृंदावन गांव बनाने चाहिए तो फिर ये शहरों और शहरों में हो रहे प्रचार का क्या मतलब है क्या होगा इसका क्या रिलेशन है दोनों का शहरों में मंदिर शहरों में प्रचार और ये जो आप बता रहे हैं इसमें आपस में क्या संबंध है तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम समझें यहां पर सिटी इज फॉर द प्रीचर्स हु कैन प्रीच टू द सिटी पीपल टू कम एंड लिव इन वृंदावन गांव सिटी बिलोंग्स टू होम सिटी इज फॉर होम सिटी इज देयर बिकॉज सिटीज आर सिटी वी आर देयर इन द सिटीज बिकॉज सिटी इज देयर सो वी आर देयर व्हाई क्यों हम शहरों में टू प्रीच देम एंड टू ट्रांसपोर्ट देम टू वृंदावन गांव It is not for us to live, but it is for us to preach. So especially, cities are meant for those who are, especially the preachers, who have special expertise and life is fully engaged in preaching. They can be in that condition in the cities. Kyon? Wahan ke logon ko preach karne ke. But as a devotees, our natural place, jahan par hamari bhakti sampann ho sake, wo sthan hai, Vrindavan, that village atmosphere with Krishna in the center. Next slide. Okay. Blank slide. Now, इस प्रकार से हमने कुछ डिटेल में देखा कि हम क्या बात कर रहे हैं किस विषय की बात कर रहे हैं और कैसे वो हमारे शरीर और मन और आत्मा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इस प्रकार से वो बेस्ट तरीका है हमें भगवत धाम जाने के लिए तैयार करने का अभी इस विषय में कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप अभी कीजिए आई विल हैव सम question answer session discussions. Association was slide, right? Yes, very important slide. Okay, no need to show that. I'll just tell. हमने कल देखा final lesson CD में प्रभुपाद जी किस बात पे जोर दे रहे हैं? Association. प्रभुपाद कह रहे हैं हमेशा भक्तों के संग में रहिए. आज आप बताइए मुझे, हम भक्त जो यहाँ रह रहे हैं सामान्यतया, जो हम काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज इत्यादि में, एक सप्ताह में या एक दिन में कितना घंटे हम भक्तों के संग में रहते हैं और कितना घंटे हम भौतिकवादी लोगों के संग में रहते हैं? दामोदर प्रभु, एनी कमेंट्स? कोई बताना चाहेंगे 24 घंटे में से कितना घंटे
जो सत्संग में इकट्ठा होते नहीं है तो ब्रेन खाली की तरह जाते नहीं है. प्रैक्टिकली जो बात है, वी आर कमिंग लिटिल बिट फॉर्मस, लिटिल बिट टेस्ट, और इतना लोडेड माइंड से आते हैं, हाउ मच वी कैन एब्जॉर्ब.
तो वो कह रहे हैं कि सत्संग में आते हैं तो भी ब्रेन खाली नहीं होता है एसोसिएट करने के लिए.
मतलब जाना है तो जाना है, आते हैं कितने दिन का कुछ पे जाना है.
और बियॉन्ड दैट, सो वी शुड बी हैंकरिंग फॉर एसोसिएशन. तो अगर हमें एक ऐसी सिचुएशन दी जाए, एक चांस दिया जाए, एक ब्लूप्रिंट दिया जाए, एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जहां पर आप एक या दो घंटे सप्ताह में नहीं बल्कि आप केवल हम सब भक्तों साथ में ही रहें, ऑलवेज वी लिव टुगेदर, ऑलवेज वी वर्क टुगेदर, हमारी हर आवश्यकताओं के लिए हम साथ में ही काम कर रहे हैं, द होल एटमॉस्फेयर, दैट इज वृंदावन लाइफ. ऑल डिवोटीज, all devotees, so should we not aspire for this? If given chance, agar aapko ye mauka mile to kya bhakton ke liye isko utsuk nahi hona chahiye? Where we will get association, only association with devotees, and we go out to preach to the non devotees, not to associate with them. Hum unke sath, lekin abhi kya hota hai, hum jab apni aarthik aur samajik sthitiyon ke liye un par nirbhar hain aadhunik vyavastha mein, to hum unko association dene ki jagah unse association लेते हैं. वी बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाई देम, वी इन्फ्लुएंस्ड बाई देयर वे ऑफ थिंकिंग. इसलिए हम देखते हैं हमारे बच्चे देखा देखी दे बिकम मॉडर्नाइज्ड, दे आर हैंकरिंग फॉर दिस मॉडर्न फैसिलिटीज एंड आसुरिक मानसिकता डेवलप होती है. तो एसोसिएशन के लिए ये पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था केंद्र है कि जिससे हम भक्त लोग खुद भक्तों के समुदाय में रह सके. इसलिए प्रभुपाद जी का ये जो पूरा चौथी वेव है, हमने देखा कैसे उसका आयोजन है कि एक भक्त जो हरि नाम से जिसका प्रारंभ होता है, इस आसुरी वातावरण में ना जाने कितने कितने सदियों से और जन्मों से रहता आया था, आज भगवान के दिव्य नाम भक्त के द्वारा दिए जाने पर वो एक सुनहरे जीवन की तरफ उसकी शुरुआत हुई है, और जिसकी पराकाष्ठा पहुंचेगी इस जीवन से जब वो भक्तों के बीच में ही रहेगा और पूरी तरह से अपने पूरे जीवन भगवत भक्ति के लिए प्रयासरत होगा, और बिल्कुल आसानी से इस प्रकार से वृंदावन के लिए तैयार होगा और वृंदावन में जाएगा. इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा है कि अभी हम जब भक्त संकीर्तन के द्वारा, मंदिर भगवान की पूजा के द्वारा, स्पिरिचुअल इनिशिएशन के द्वारा अभी हम आगे बढ़ें, गो फॉरवर्ड, और भी आगे जाने के लिए प्रभुपाद उनको प्रेरित कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या, यहीं तक सीमित नहीं हो, इस पूरे जगत के उपकार के लिए और सबसे पहले अपने उपकार के लिए, फॉर हेल्पिंग अवर स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी हेल्प के लिए वी शुड नाउ थिंक वेरी सीरियसली ऑन दिस प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन. प्रभुपाद के इस चौथे इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यानपूर्वक हमें, हम भक्तों को अपना कम्युनिटीज के लिए, अपने समुदाय के लिए सोचना चाहिए, जिससे हम भक्तों का जीवन भक्तिमय हो, उसमें आसानी से हम प्रगति कर सकें, और उसका दूसरा पर्पज है पूरे संसार को हम प्रीच कर सकें, प्रेरित कर सकें इस तरफ, और पूरे संसार को हम वृंदावन बना सकें. तो इसलिए जो चौथा मिशन है, इसके दो पहलू हैं, एक अपने हमारे जीवन में भक्ति में हेल्प, और दूसरा एज ए प्रीचिंग एन एग्जाम्पल फॉर द होल वर्ल्ड टू फॉलो, पूरे जगत के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना. दैट स्लाइड फॉर डिवोटीज. प्रभुपाद कह रहे हैं यस, वॉट एवर इट मे मी, we should be satisfied locally by our food, by our clothes, by our milk, that's all. Let the whole world go to hell. We don't care. Is pure jagat ko jahan ja raha hai isko jaane do, we don't care. If you want to save yourself also, you do this. Here is an example. If you want artificial life, city life, you do. But we shall live like this. This is ideal life. Yani ki it is for us, at least for to save us, we should adopt this. And then others, by seeing, they will come. And if they don't come, that's their problem. But at least we save us. Blank slate. तो इस प्रकार से हम ये दूसरा सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं. नाउ एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक अप. कोई जिज्ञासाएं, कोई प्रश्न आपके हों. इम्प्लीमेंटेशन, हाउ टू रीच दिस, हाउ टू एस्टैब्लिश सच विलेजेस, वृंदावन विलेजेस. प्रैक्टिकली व्हाट वी शुड डू, आज की स्थिति जिसमें हम हैं, वहां से कैसे हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं. To establish these villages, Varnashram villages, Vrindavan villages. Yeah. Yeah. All these issues we will deal with in the next session. क्या किसी भक्त का कोई प्रश्न है? Do you have another mic? नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस.
इसमें हमारा क्या स्तर है आज? क्या? आपने जो कैटेगरी डिफाइन की है उसमें आज हमारा क्या स्तर है, हम किस स्तर पे हैं? आज मैं ये सुना लेकिन कंफ्यूज हूँ.
हाँ.
कि मैं कौन से स्तर पे, मुझे क्या करना चाहिए, ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए, वैश्य का करना चाहिए, तो मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करूँगा ये लेवल?
उनका प्रश्न है कि मैंने सुना है कि ये चार वर्ण हैं, लेकिन मैं क्या समझूँ कि मेरा क्या इसमें स्तर है, मैं कौन से स्तर पर काम करता हूँ? सो वर्णाश्रम समाज में किस आधार पर यह पता लगता है कि कौन व्यक्ति का इंक्लिनेशन क्या है?
एक्चुअली वंस वी हैव डिस्कस्ड द सब्जेक्ट, गुरु इज द अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट इज द पर्सन स्वभाव जम, वर्ण कर्म स्वभाव जम.
तो उसके लिए निम्नलिखित तरीके हैं किसी व्यक्ति की वृत्ति को जानने के. सबसे पहला है होरोस्कोप, जन्म पत्रक. इफ इट इज मेड बाई एन इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल ब्राह्मण, बाई होरोस्कोप ही कैन गेट एन हिंट आइडिया कि आप कौन से इंक्लिनेशन को बिलोंग करते हैं. देन सेकेंड इज योर फैमिली हेरिटेज, दैट इज नॉट द ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर बट दैट इज एन इंडिकेशन, इट हैज अ रोल कि आप किस लीनियज में आ रहे हैं, आपके पिता और वो किस व्यवहार, किस नेचर के हैं, दैट इज अ फैक्टर. फिर तीसरा प्रैक्टिकल टेस्ट्स, जो वरिष्ठ हैं समाज के, जो वरिष्ठ हैं वो जो हैं विशेष प्रकार के टेस्ट्स के माध्यम से बहुत जल्दी एज में, बच्चे बचपन में ही ये पता लगाते हैं कि ये बच्चे की वृत्ति क्या है, ये कौन से गुणों के अंदर सेट होता है, ये इसको कैसा ट्रेनिंग देना चाहिए, और उस आधार पर उसको फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है. ऐसा नहीं कि सबको एक ही ट्रेनिंग मिल रही है. तो जो गुरु है, जो अध्यापक है, वो प्राथमिक अवस्था में ही बच्चे को देखेगा कि इसको कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेस्ट के द्वारा, स्पेशल टेस्ट. जैसे हमने बताया कि वो मरा हुआ चूहा था, सो लाइक ए टेस्ट, एंड ही मेड इट इनटू मनी, दैट मीन्स इज अ वैश्य. सो लाइक दैट देर आर डिफरेंट टेस्ट. जैसे एक आता है परशुराम कर्ण का, तो वो शूद्र था एक्सटर्नली, लेकिन सेवा कर रहा था परशुराम की, और नो एक्सटर्नली एट दैट टाइम, लेकिन वास्तव में वो क्षत्रिय था. तो वो जब सेवा कर रहा था तो एक बिच्छू काट रहा था और खून निकल रहा था, और बाद में जब परशुराम उठे तो देखा ये क्या खून कहाँ से आ रहा है, तो बोले बिच्छू काट रहा है, तो तुमने बोला क्यों नहीं, वो सहन कर रहा, तो बोले तुम जो है यू कैन नॉट बी ब्राह्मण, ही केम इन द फॉर्म ब्राह्मण, ओके ब्राह्मण के रूप में गया था, ओके तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, यू आर क्षत्रिय. तो इस प्रकार से टेस्ट, क्योंकि स्पष्ट गुण हैं, लक्षण हैं, जिसके द्वारा ये अलग अलग सिद्ध पता होते हैं, स्पेशली लाइक ब्राह्मण. ओके एनीवे दैट डिटेल वी कैन डिस्कस पर्सनल. तो इस प्रकार से, इन प्रकार से हम पता लगाते हैं कि हमारा क्या स्थिति है. एनी अदर क्वेश्चन? अभी भी आप देखिए, आज मंदिर में हम जब सेवा करते हैं सब, तो हम जब सेवा करना प्रारंभ करते हैं, हम एक प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक होते हैं, अच्छा लगता है हमको, और उसको हम अच्छे से कर पाते हैं. दैट इज योर नेचर, डू इट, वेरी सिंपल. या कोई भी व्यक्ति आता है हम उनको अलग अलग सेवा में लगाते हैं एंड ग्रेजुअली एज दे आर वर्किंग दे विल नो दिस सूट्स मी, ये मेरा स्वभाव है, आई लाइक टू डू इट. तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. ओके, दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या मेल और फीमेल में सेम वर्ण होते हैं? जब हम भागवतम में देखेंगे वर्णन सातवें, आप देखिएगा सातवें स्कंद में नारद मुनि की जो इंस्ट्रक्शन है युधिष्ठिर महाराज को वर्ण आश्रम के विषय में, उसमें नारद मुनि ने पहले चार वर्णों के अलग अलग ऑक्यूपेशंस को डिस्क्राइब किया और उसके बाद फिर स्त्री के धर्म को डिस्क्राइब किया. सो एक्चुअली दिस वर्णा रेफर्स टू दिस मैन एंड लेडीज हैव गॉट देयर सेपरेट फंक्शन. ऑफकोर्स वो जिस वर्ण के साथ उनका विवाह होता है सो दे शेयर द क्वालिटीज बट दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन, अलग उनके कार्य हैं. उसको हम देखेंगे वो कार्यों को, फंक्शंस को, उनकी नेचर को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को. उसमें बताया गया है द क्वालिटीज ऑफ द विमेन, चेस्टिटी, पतिव्रता, देन हेल्पिंग द हस्बैंड इन डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड अदर थिंग्स, देन टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड अफेयर्स, पाक विद्या, अलग अलग प्रकार की विद्याएं. इस प्रकार से वो स्त्रियों के कार्य और स्त्रियों के गुण हैं. इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे द एजुकेशन फॉर लेडीज इज नॉट दिस टेक्निकल एजुकेशन और नॉट इवन द शास्त्रिक एजुकेशन इन दैट वे. द एजुकेशन फॉर लेडीज इज डिफरेंट कला, अलग अलग कलाएं, पाक विद्या, हाउ टू डेकोरेट, हाउ टू कीप नाइस थिंग्स इन द हाउस नाइसली, इस प्रकार की विद्याओं में उनको ट्रेनिंग होना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू बिकम अ चेस्ट वाइफ, दैट शुड बी द सेंटर ऑफ फोकस फॉर लेडीज टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु.
आश्रम के बारे में बताया आपने, तो वो आश्रम में हम बना दे उसके बाद भक्तों का संघ हमको वहाँ मिली है, मगर आज अपनी जिस स्थिति में है, परसों मैंने पूछा पांडव से, आज वो स्थिति में नहीं है कि हम वहाँ जा सके या उनके साथ संघ कर सके, हमारे काम मम्मी उनको अलाउ नहीं करते, क्योंकि हम क्या हमारा क्या उपाय हो जैसे कि भक्तों का संघ ज्यादा से ज्यादा कर सके.
एक बात तो है कि आदर्श चीज को समझना, ठीक है, फिर एक है अपनी स्थिति को समझना, और फिर एक है यहाँ से यहाँ तक जाने के रास्ते को समझना. तो तीन चीज समझनी पड़ेगी. तो हमारी वर्तमान स्थिति जो है, अभी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज की स्थिति से आप उस प्रकार से कार्य कीजिए जिससे कि धीरे धीरे आप उस तरफ चलें. इमीजिएटली ओवरनाइट मे नॉट बी पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट, लेकिन आप देखिए हाउ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप जो आपको उस तरफ जाने के लिए हेल्प करेगा. देन नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, लाइक दैट. और कोई प्रश्न है?
यस.
yes.
yes.
जरूरत नहीं है क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप से सीखते हैं डायरेक्ट. इसलिए हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि हम आज के समाज से निकल करके उस समाज में जाने के लिए स्टेप्स लें, तैयार हों. जब आज के समाज में हैं तो बंधे हुए हैं, सो फॉर टाइम बीइंग वी हैव टू डू द थिंग्स, देयर इज नो इमीडिएट एस्केप, उससे हम तुरंत बाहर नहीं निकल पाएंगे. तो इसलिए वी हैव टू कंप्रोमाइज टू सम एक्सटेंट इमीडिएटली, बट एटलीस्ट हमें आज से धीरे धीरे उस तरफ चलने के लिए प्रयास करना होगा. वो प्रयास की शुरुआत होती है मन से. पहले मन में समझना होगा कि क्यों जरूरी है, कहाँ जाना है, फिर जब मन में आएगा तो धीरे धीरे स्टेप्स आएंगे. इसलिए ये जो एफर्ट है ये सामूहिक एफर्ट है, इट्स ए कम्बाइंड एफर्ट, इट्स नॉट ए वर्क ऑफ वन पर्सन. हम पूरे इस्कॉन में हम सब भक्तों को मिलकर के ये एस्टैब्लिश इस तरफ चलना होगा. ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, इट नीड्स, इट्स ए कम्युनिटी वर्क. इसलिए वी आर प्रीचिंग टू कम्युनिटी, सो टुगेदर हम मिलकर के वी कैन कम आउट ऑफ दिस एंड वी कैन हैव आवर ओन विलेजेस. व्हाई वी आर नॉट, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा यहीं पर रहें. वी कैन हैव आवर ओन विलेजेस, हम अपने खुद अपने स्थान बना सकते हैं. वो कैसे बनाना है, क्या उसके लिए, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे.